जीवन का सार जो है वो मन से जुड़ा हुआ है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारे मन को नियंत्रण करना है। भक्ति का प्रोग्रेस डायरेक्टली मन से प्रोपोर्शनेट है। अगर हम हमारे मन का नियंत्रण कर सकते हैं, मन को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति का प्रोसेस केवल फिजिकल प्रोसेस नहीं है, भक्ति एक मन की क्रिया है। लेकिन मन हमारा बात सुनता नहीं है, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, मन को दोस्त बनाना मुश्किल है। अगर आज मैं आपको कहूँ कि अपना हाथ ऊपर करो, क्या आपका हाथ आपकी बात मानेगा? सुशीला माता जी, हाथ ऊपर करिए। नहीं तो आपका बात मानता है ना? आपका हाथ, आपका पैर आपके नियंत्रण में है, आप जब चाहे उसको ऊपर नीचे कर सकती है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपको बोले बिना ऊपर नीचे हो जाता है? नहीं, हमारे शरीर के अंगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ को, पैरों को, आंखों को, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हाथ हमारी बात सुनता है, पैर हमारी बात सुनता है, लेकिन मन हमारी बात नहीं सुनता है। हम मन को बोलते हैं ईर्ष्या मत करो, लेकिन मन ईर्ष्या करता है। हम मन को बोलते हैं कि गुस्सा मत करो, लेकिन मन गुस्सा करता है। हम मन को बोलते हैं कि भगवान से जुड़े रहो, लेकिन मन यहाँ वहाँ भागता है। मन हमारी बात नहीं सुनता है। लेकिन मन को मनाए बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मन को तो मनाना है। भक्ति में आगे जाना मतलब जैसे छोटे बच्चे ना साइकिलिंग करते हैं, किए हैं बचपन में? कितने लोग ने साइकिलिंग की है? यहाँ तो सारे बूढ़े बूढ़े ही बैठे हैं। साइकिलिंग आती है, पता है साइकिल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? कि आपके टायर में हवा हो, है ना? टायर अगर पंचर हो तो फिर साइकिल बहुत मुश्किल है। लेकिन सपोज अगर आपकी साइकिल बहुत महंगी हो, हमारे ज़माने में तो एटलास, बीपीएल ऐसा कुछ होता था, बीपीएस ऐसा कुछ था। अभी क्या है सबसे महंगी साइकिल? हाँ, अच्छा, कितने की आती है? मेरा तो पूछने का ये मतलब है कि सपोज आप कॉस्टली साइकिल ले लो, 20,000 की, 30,000 की, स्पोर्ट साइकिल ले लो 50,000 की, लेकिन अगर उस साइकिल में भी टायर पंचर हो तो साइकिल काम में नहीं आती है। टायर तो ठीक रहना चाहिए, टायर में हवा रहनी चाहिए। और आप देखो कभी कभी ये जो पंचर जो चीज़ होती है ना, छोटी सी कहीं होती है, आपको दिखाई भी नहीं देती है। आपको साइकिल के शॉप में जाना पड़ेगा और फिर वो बंदा जो है वो पानी में डाल के देखना वगैरह जो भी करते हैं प्रोसेस। ऐसे ही हमारा मन भी अगर पंचर हो ना, तो फिर भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और ये पंचर वाली साइकिल को अगर आप चलाना चाहो ना, तो इतना श्रम लगता है, क्योंकि उस साइकिल को घसीट घसीट के ले जाना पड़ता है। हमारा भी मन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए भक्ति जीवन में बहुत श्रम लग रहा है। लगता है कि कितना डिफिकल्ट है भक्ति जीवन, 16 माला करना कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि मन पंचर है। अगर मन को ठीक कर दे तो इतना आसानी से साइकिल आगे चली जाएगी। हम दौड़ दौड़ के वृंदावन, गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी साइकिल पंचर है, और ये पंचर वाली चीज़ जो है वो एक्सपर्ट ही बता सकता है कि पंचर कहाँ है। तो इसलिए क्या करना है? गुरु की मदद लेनी है, मन का पंचर को ठीक करना है। अब ये जो मन है उसमें अलग अलग विचार आते हैं ना। अब ये विचार ऐसे क्यों आते हैं, इसका भी एक कारण है। अब देखो, जब ठंडी की सीज़न होती है तब आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कमरे के अंदर आ जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया, अगर आपके कमरे में छोटी सी लाइट ऑन हो तो बाहर के सारे इंसेक्ट्स, आपके अगर विंडोज़ खुले होंगे तो सारे अंदर आ जाएंगे सर्दियों में। और फिर आप देखोगे सुबह तक तो वो मर भी जाते हैं, नीचे फ्लोर में मिलेंगे आपको, वो लाइट से अट्रैक्ट होकर अंदर में आ जाता है। अब ये जब इंसेक्ट्स आ रहे हैं तो इसकी गलती हम किसको दे? सर्दी की सीजन को गलती दे, या हमने विंडो बंद नहीं की उसको गलती दे, या अंदर में हमने लाइट चालू रखी उसको गलती दे? गलती तो तीन है, एक तो सर्दी का मौसम है, एक तो हमने खिड़की बंद नहीं की है, और एक तो अंदर में हमने लाइट ऑन रखी है। उसी तरह से हमारे मन में भी जो ये विचार आते हैं इसके तीन कारण हैं। एक तो है कि ठंडी की सीजन, माने बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। अगर आप भक्त बन गए तो टीवी सीरियल वाले टीवी प्रोड्यूस करना बंद तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप भक्त बन गए तो टीवी चैनल्स बंद नहीं होगी, आप भक्त बन गए तो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स प्रिंट होना बंद नहीं होगी, होर्डिंग्स बंद नहीं होगी, बाहर की दुनिया में सब पब्स एंड बार्स बंद नहीं हो जाएंगे, बाहर की दुनिया तो ऐसी ही रहेगी, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन हमें क्या करना चाहिए था? हमारी विंडो को बंद कर देना चाहिए था। अब ये विंडो क्या है? ये मन का तरीका है चीजों को अंदर में ग्रहण करने के लिए। समझ में आ रही है बात? सी, किसी को कंट्रोल करना है, वेदर हम उसको हमारा दुश्मन माने या दोस्त माने, तो सबसे पहले हमें उसकी वीकनेस जाननी बहुत जरूरी है। और मन की वीकनेस ये है कि मन हर चीज का आनंद इंद्रियों से लेता है। उसका मतलब अगर इंद्रियों को कंट्रोल में रखे तो मन कंट्रोल में रहेगा। और ये इंद्रिय क्या है? ये वो खिड़कियां है। अगर खिड़की बंद होती तो इंसेक्ट्स अंदर में नहीं आते। और अंदर ये जो लाइट ऑन है, ये लाइट ऑन मतलब ये क्या है? ये लाइट, जब कोई इंसेक्ट्स, माने यहां मेरे बोलने का मतलब है गंदे विचार या वो विचार जो भक्ति में अनुकूल नहीं है। अब ये विचार अंदर क्यों आते हैं? लाइट को देख के अट्रैक्ट होते हैं। उसका मतलब हमारे मन में भी कहीं छोटा सा इस वस्तुओं को भोगने के रस की इच्छा है, बेशक छोटी मात्रा में है, लेकिन कहीं इच्छा तो है। अगर इच्छा नहीं होती तो वो विचार नहीं आएंगे। वो इच्छा है इसलिए वो विचार आते हैं। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रही हूँ? बाहर के भौतिक जगत को हम मन से, हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, और इंद्रियों से हम गलत चीज इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि अंदर में जो लाइट है, माने उस चीजों को अनुभव करने का छोटा सा कहीं रस है। हमारे घर में भी, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ इसका, हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। हमारे घर में भी जब मेहमान आते हैं तो मेहमान भी अलग अलग टाइप के मेहमान होते हैं। एक मेहमान तो ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत चाहते हैं, हम बुलाते हैं, और वो जब आते हैं हमें अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि वो कहीं नहीं जाए, हम उन्हें फोर्स करते हैं कि आप रुक जाइए। दूसरे टाइप के मेहमान ऐसे होते हैं जो बिना बोले आ जाते हैं लेकिन हमें अच्छे लगते हैं इसलिए हम उन्हें रोक लेते हैं। और तीसरे टाइप के गेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं है लेकिन वो आ जाते हैं और हम सोचते हैं इसको कैसे भगाएं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे इसे भगाना है। वैसे हमारे मन में भी तीन प्रकार के सोच आती है। एक तो ऐसी है जिन्हें हमने बुलाया है, वो बुरे विचारों को हमने स्वागत किया है, हमने बुलाया है इसलिए हम चाहते हैं कि वो और भी रुके। दूसरे टाइप के विचार ये है कि वो गलत विचारों को हमने नहीं बुलाया था लेकिन वो आ गए लेकिन हमें अच्छा लगता है इसलिए हम उसे रोक लेते हैं कि कोई बात नहीं तुम रुक जाओ, मैंने तो नहीं बुलाया था, आ गए तो आ गए, मैं क्या करूं। और तीसरे बुरे विचार ये है जब वो आते हैं तब हम सोचते हैं कि ये गलत विचार है, ये नहीं आना चाहिए था, अब मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा सा कष्ट करके इसको मेरे मन से बाहर फेंकना है। इसका मतलब क्या होता है? टू बी माइंडफुल, हमें कॉन्शियस रहना है हमारे मन में क्या आता है वो क्या जाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अनकॉन्शियस है, कुछ भी विचार आता है कुछ भी चला जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक्चुअली हमें क्या रहना चाहिए? हमें माइंडफुल रहना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए ये कैसे विचार आ रहे हैं, क्या ये विचार मेरे लिए अच्छे हैं क्या ये विचार मेरे लिए ठीक है, क्या इन्हें मेरे पास रहना चाहिए, और अगर हमें समझ में आता है कि नहीं ये विचार ठीक नहीं है तो उसे एंटरटेन नहीं करना, इमीडिएटली उसको बाहर निकाल देना है। अब आप बोलोगे माता जी कुछ भी विचार अगर आ जाता है तो उसको कैसे निकाले बाहर, उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कोई बुरा विचार आ गया तो आप उसको कोई अच्छे विचार से सब्स्टिट्यूट कर, ये उसका सॉल्यूशन है। तो हमें कॉन्शियस रहना है, अनकॉन्शियसली नहीं जीना है। कैसे टाइप के विचार आ रहे हैं, कैसे टाइप के विचार जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें सदैव जागरूक रहना है। इस मन के ऊपर में हमें काम करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मंदिर आना चले जाना, बस नाच लेना प्रसाद ले लेने से नहीं होगा, हमें इस पे गंभीरता से काम करना पड़ेगा। हमारा मन कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम तो मन का ही था ना, हमारे मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए तो भगवान को छोड़ के हम यहाँ फंसे हुए हैं। अगर अभी भी उस मन के पीछे हमारा टाइम नहीं देंगे तो कैसे होगा। हम साधना कार्ड बनाते हैं कि हमने चैंटिंग कितने राउंड्स किया, हम साधना कार्ड बनाते हैं कि हमने कौन सी किताब पढ़ी, हम साधना कार्ड बनाते हैं कि हम आरती में गए कि नहीं गए, हमने एकादशी की कि नहीं की, लेकिन मन का साधना कार्ड कौन बनाएगा कि मन का क्या हो रहा है, मन का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। मन तो भगवान से अलग रहना चाहता था, इसीलिए तो यहाँ आके गिरे हैं। बोलते ना क्या है, खजूर पे अटके हैं, जहां से आसमान से गिरे और बस हम आसमान। लेकिन हम आसमान से गिरे नहीं हैं, हमें आसमान से किसी ने धक्का भी नहीं दिया है, हम आसमान से कूदे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। हम तो गोलोक वृंदावन में थे आराम से, हमें वहां से किसी ने धक्का भी नहीं दिया था, हम आना चाह रहे थे नीचे, हम कूदे हैं नीचे। और ये सब करामात है मन की, ये सब है मन की बदमाशी। आज का जो हम ये भजन लेंगे ये मन के ऊपर में है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर मन से कह रहे हैं कि ए मेरे दुष्ट मन, तुम्हारे वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो आज हम ये भजन को गाएंगे और उसकी एक एक लाइन पे हम चर्चा करेंगे। अपने अपने फोन्स में भजन को निकालिए। ई से आता है ए मुन्ना दुर्मति, मेरे पीछे पीछे गाएंगे और फिर हम एक एक लाइन को चर्चा करेंगे। हे मुन्ना दुर्मति संसार भीतरे उड़िया चीनुआमी, हे मुन्ना दुर्मति संसार भीतरे संसार भीतरे पोड़िया चीनुआमी, संसार भीतरे तव निज जना कोन महाजना, तव निज तव निज जना कोन महाजना, पठाइया दिले तो पठाइया दिले तुमी, मुन्ना दुर्मति संसार भीतरे उड़िया चीनुआमी, बहुत सुंदर। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ए मुन्ना दुर्मति, ए मेरे दुष्ट मन, तुम्हारे वजह से आज मेरा क्या हुआ है, संसार भीतर उड़िया चिनवामी, इस संसार के भीतर में मैं आया हूँ तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुम रहना चाह रहे थे भगवान से अलग। हम तो सब ओरिजिनली भगवान के पास ही थे, हमारी ऐसी इच्छा हुई कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, फिर ठाकुर जी ने हमारे लिए संसार की सृष्टि की जो आध्यात्मिक जगत की छाया है। और छाया क्या होती है? छाया उल्टी होती है। हम अगर आईने में हमारा फेस देखें तो हमारा राइट कान लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट का राइट दिखता है। ये आध्यात्मिक जीवन की छाया है, आध्यात्मिक जगत की छाया है। तो आध्यात्मिक जगत क्या है? वही कुंठा, वहां पे कोई दुख नहीं है, कुंठा नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तीन टाइप की आध्यात्मिक, आदि दैविक आदि भौतिक, सब प्रकार के दुख है। यहाँ पे हम परमानेंटली नहीं जी सकते, यहाँ पे जो आता है उसे मरना पड़ता है, ओल्ड होते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे, ए मन दुर्मति, तुमको क्या सूझा मेरे मन, तुमने ऐसा रिबेल किया और आज हम देखो यहाँ पे संसार भीतर है। और फिर मन बोलते, पोड़िया आचीनवामी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर तो गए लेकिन गिरने के बाद भी हमें ये सेंस नहीं है कि चलो चलते हैं, हम सेटल हो गए हैं, हम यहाँ पे सेटल हो गए, कंफर्टेबल हो गए। पोड़ी में आची हुआ, मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। ये संसार जो है, वेदर जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी लाइन हो या कोई भी वे हो, हर एक पर्सन इस संसार को एक अंधकूप से कंपेयर करता है, बोलता है ये संसार एक अंधकूप है, इसमें हम गिर गए हैं। और इस अंधकूप में अभी नीचे रस्सी भी आ रही है, लेकिन उस रस्सी को पकड़ के हम उठना नहीं चाहते। चार चार रस्सी आ रही है, जो ऑथेंटिक प्रामाणिक संप्रदाय है ना, रुद्र संप्रदाय है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, अलग अलग रोप्स तो आ रही है, लेकिन हम उस रोप को पकड़ के ऊपर चढ़ना नहीं चाहते। हम सेटल हो गए, हम कंफर्टेबल हो गए, हम कंडीशनड हो गए इस अंधकूप में। मैं बहुत बार बताती हूँ कैसे, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को एक जेल में डाल दिया था, और वो जेल ऐसा था, बड़ा सा डंजन जैसा था, तो जहाँ पे 100 लोग रह सकते हैं उसके जगह में वहां पे 200 लोगों को भरा हुआ था। तो एक एक बंकर बेड में इतने चिपक चिपक के सब सोते थे, और उनका खाना भी दरवाजे के नीचे जो प्लेस होती है वहां से ब्रेड उनको भेज दिया जाता था। तो बहुत सालों तक उस जगह में वो लोग रहे जो बहुत ज्यादा डैम्प एंड अंधेरा से भरा हुआ था। और जब फाइनली रेवोल्यूशन खत्म हुआ और उन्हें वहां से निकालने के लिए आए लोग और उनके लिए दरवाजा खोला और उनको बोला गया कि आप यहाँ से निकलिए, तो उन्होंने बोला हमें नहीं निकलना है, हम यहाँ कंफर्टेबल है, क्योंकि अब वो कंडीशन हो गए थे। तो अब उन्होंने बोला कि अगर हमको अभी आप बाहर निकालेंगे तो हमें बाहर जाके खाना ढूंढना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अब हमको अंधकार की आदत हो गई है, हम रोशनी भी नहीं देख पा रहे हैं, हम कंफर्टेबल, बस हमको यहाँ हमारा खाना दे दो, हम यहाँ रह जाएंगे। अब सुनने के लिए हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को जेल से निकाला जाए तो उसे खुशी होनी चाहिए, लेकिन हमारी भी परिस्थिति ऐसी है, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हम कितने कंफर्टेबल है, हम कंडीशन हो गए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये जेल है, यहाँ से हमें निकलना चाहिए। किसी पक्षी को भी अगर बहुत दिन तक आप पिंजरे में रख दो और उसके बाद में आप पिंजरे को खोल दो, तो पक्षी को पता ही नहीं चलता कि उसको उड़ना चाहिए, वो अपनी जो पंख होते हैं उसको फहराना भूल ही जाते हैं। उसी तरह से हम भी इतने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से यहाँ सेटल हो गए हैं कि हमको लगता है ठीक ही तो हूँ, प्रॉब्लम क्या है, आई एम कंफर्टेबल, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रही हूँ, मैं अपने परिवार को देख रही हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम फाइन। यहाँ पता ही चल रहा है कि हम जेल में है। जेल में जो होता है उसका सबसे बड़ा ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं जेल से बाहर कैसे निकलूं, लेकिन उसके बदले में हम जेल में कैसे और कंफर्टेबल हो सके उसके प्रयत्न में हम पड़े हैं। अब जेल में क्या किया जाता है, जो थोड़े से भयानक कैदी होते हैं उनको जंजीरों में बांधा जाता है। अब आपको पता है जब जंजीरों में बांधते हैं तब कितना कष्ट होता है, लेकिन आप इमेजिन करिए जंजीरों में बांधा हुआ कैदी ये नहीं बोलता है कि मेरी जंजीरें निकाल दो, बस वो इतना ही रोता है कि आप मुझे सोने की जंजीर क्यों नहीं पहनाते, चांदी की क्यों पहनाई है, इसको देखो इसके पास तो डायमंड की जंजीर है, तो हम सोचेंगे ये बेवकूफ है, तुम जंजीर निकालने की कोशिश करो, जंजीर के कलर बदलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन हम भी तो कलर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे पास में ज्यादा पैसा हो, ज्यादा गाड़ियां हो, ज्यादा हो, तो हम ज्यादा आनंद कर पाएंगे, लेकिन ये तो जंजीर है, और जंजीर के कलर बदलने से जंजीर की जो वृत्ति है उस वो तो नहीं बदलेगी, लेकिन हम कंडीशन हो गए, हम यहाँ पे सेटल हो गए हैं, तो इस अंधकूप में हम रहना चाहते हैं। इसको अंधकूप बोला जाता है क्योंकि यहाँ अंधकार है। अंधकार माने लिटरली अंधकार नहीं है, आप बोलोगे यहाँ तो ट्यूबलाइट है, लाइट है, सन है, सब ठीक है, यहाँ अंधकार कहाँ है? अंधकार का मतलब है अज्ञानता। यहाँ पे अज्ञानता में है, जो हमारा रियल पोजिशन है हम उसको नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए हम अज्ञानता में है। इसलिए गुरु नानक जी का एक भजन आता है, उसमें वो बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि जो संसार है ये एक अंध कुआ जैसा है। तो नानक जी रिक्वेस्ट करते हैं कि हे गोविंद, हे गोपाल, इसमें से मुझे निकालो। बोलते हैं कि मुझे यहाँ डर लग रहा है। अंधकूप महाभयान नानक पार उतारो, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। आप तो दया के निधि ओशन हो, हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे इस अंध कुएं में, मुझे यहाँ से आप बाहर निकालो, इस अंधकार से, इस अज्ञानता से मुझे बाहर निकालो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आ तो गया हूँ, अब यहाँ सेटल हो गया हूँ, यहाँ से बाहर निकलना मैं नहीं चाह रहा हूँ। हम सब ने चश्मा पहन लिया है, जब हम लाल रंग का चश्मा पहनते हैं तो सब कुछ लाल दिखता है, हरे रंग का चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ हरा लगता है। माया का चश्मा पहन लिया है तो हमें लगता है आई एम फाइन, आई एम कंफर्टेबल, प्रॉब्लम क्या है। हमने अहंकार का चश्मा पहन लिया है, हमने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन का चश्मा पहन लिया है। हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन है हम कृष्ण के दास है, लेकिन हम अब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से जुड़ चुके हैं। हमारे गुरु महाराज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, जब वे मायापुर टेम्पल टेक केयर करते थे शुरुआत के दिनों में, तो एक बार वे कलकत्ता गए थे, वहाँ पे किसी प्रिंटर के पास में कुछ बुक्स प्रिंटिंग करवाने के लिए गए थे, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई टीचर्स आई हुई है कोई स्कूल की, और वहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे बंगाली में एक प्रश्न था उस क्वेश्चन पेपर में कि तुम्हार परिचय की क्या, तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है। तो हमारे गुरु महाराज ने हंसते हुए टीचर से पूछा कि क्या आपके स्टूडेंट अगर लिख दे कि मेरा परिचय है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आप उसको कितने नंबर देंगे? तो टीचर ने बोला हम उसे शून्य देंगे, जीरो, क्योंकि वो उसका परिचय नहीं है, उसे तो अपना नाम लिखना है कि मेरा नाम ये है, मैं एक्स वाई जेड हूँ, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ। तो फिर हमारे गुरुजी प्रवचन में बोल रहे थे कि इस संसार में सब अपने फॉल्स परिचय के साथ में जुड़ गए हैं, ये आत्मा वाला परिचय को कोई मानता नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमारा परिचय क्या है, हम कृष्ण के दास है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से हम जुड़ गए हैं। जैसे हम पुरंदर दास की बहुत अच्छी एक कहानी आती है, कैसे पुरंदर दास एक बार अपने गुरु भाइयों के साथ बैठे हुए थे, और सारे पुरंदर दास के साथ में मजाक में पूछ रहे थे तुम क्या सोचते हो ये भगवान के पास जाएगा? तो पुरंदर दास बोलता है नहीं जाएगा, बोलता ये जाएगा नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा, तुम जाओगे? फिर उसने कहा अगर मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। तो फिर सबने बोला कि इसको तो बहुत अभिमान है, हम सब नहीं जाएंगे और तुम जाओगे। तो फिर उसने बोला नहीं नहीं आप मेरी बात समझो, मैंने बोला अगर मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे में ये जो मैं है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जिस दिन मेरे में वो मैं चला जाएगा तब मैं चला जाऊंगा भगवान के धाम में। तो हमारे में जो ये आई है ना, सब जगह हमारा ये ICICI, मतलब ICICI बैंक का एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे बोलने का मतलब है ICICI, मेरा हर जगह मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखता है, मैं अपने आप को देखती हूँ, मेरा स्वार्थ, मेरा चीज, और कुछ नहीं दिखाई देता है, ये हमारा स्वभाव है। यहाँ पे बोल रहे अंधकूप महाभयान, हम इस अंधकूप में गिर गए हैं और हम यहाँ सेटल हो गए, हम यहाँ से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं एमनो दुर्मति, इस दुष्ट मन के वजह से संसार के भीतर में मैं आ गया हूँ, पोड़ी हो आचे ना, हमें मैं यहाँ पे सेटल हो गया हूँ। उसके बाद लाइन बोलते हैं तब निज जन कोनो महाजन, बोलते लेकिन भगवान ठाकुर जी आप इतने दयालु हो, जब आपने देखा कि मैं इस अंधकूप में गिरा हुआ हूँ तो आपने बड़े प्यार से आपके अपने लोग को मुझे वापस बुलाने के लिए भेजा है। कितनी सुंदर बात। देखो कभी कभी ऐसे हमारे भी लाइफ में ऐसा होता है, जो हमसे बहुत क्लोज है, अगर हम उन्हें बुलाना चाहे, उनसे बात करना चाहे, तो एक अलग अप्रोच होता है। जैसे कोई हमारा वर्कर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई गैस वाला आ गया गैस सिलेंडर लेके, तो आप उसको ये नहीं बोलते कि आइए बैठिए पानी पिएंगे, थोड़ा हॉल में बैठिए मैं अभी पैसा लेके, आप उसको बोलते तुम जरा डोर के पास खड़े रहो मैं पैसा लेके आती हूँ। वही अगर आपकी कोई रिलेटिव गेस्ट आ गए तो आप उसको बोलेंगे आइए अंदर बैठिए पानी पीजिए। वही अगर आपकी कोई क्लोज फ्रेंड आ गई हो तो आप बोलोगे चलो अंदर आओ बैठते हैं, दोनों मिलके अंदर में बात करते हैं, आप शायद उसको अपने बेडरूम तक भी ले जाओ। जो जितना क्लोज है आप उसके साथ उतना क्लोज से आप उसके साथ व्यवहार करते हो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, जब उन्होंने देखा कि ये जीव ऐसे गोलोक वृंदावन से चले गए हैं या नीचे गिर गए हैं या नीचे कूद गए हैं, तो उन्होंने ऐसे ही किसी को नहीं भेज दिया, उन्होंने अपने खुद के पार्षद जो उनसे बहुत क्लोज है, जिनके साथ वो खाते हैं पीते हैं खेलते हैं गोलोक वृंदावन में जिसके साथ रहते हैं, वैसे लोगों को बोला तुम जाओ जरा उसको लेके आओ, आप कितने दयालु है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कोई महाजन, यहाँ पे जान मुझ के भक्ति विनोद ठाकुर किसी का नाम नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब अपने अपने गुरु को वहां पे इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हमारी जीवन में हम प्रभुपाद जी को वहां पे इमेजिन करेंगे कि हम तो ऐसे संसार में गिर गए थे, आपने दया करके इस महाजन को भेजा हमारे जीवन में और वो आके हमें भक्ति भक्ति को भक्ति के बारे में हमें सिखाया और हमें भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो कोनो महाजन, महाजन माने जो भगवान के शुद्ध भक्त है, महाजन माने सिर्फ भागवत के जो 11 महाजन है वो नहीं है, जो भी महा माने जो महान लोग हैं जिसके साथ जो कनेक्टेड है या जो हमें महान लोग महान भगवान के साथ कनेक्ट कर सकता है वो महाजन है। तो बोलते कौन है महाजन और प्रभुपाद जी कौन थे, तो प्रभुपाद जी पूर्व में भगवान के पार्षद थे, भगवान के साथ थे, तो वो भगवान का साथ छोड़ के आए हैं हमें वापस ले जाने के लिए। तो बोलते आपने दया करके आपने क्या किया है, आपके कोई निज जन आपके निज जन को भेजा है हमें वापस बुलाने के लिए। बोलते तब निज जन कोनो महाजन पाठिया दिले तुम्हें, सिर्फ भगवान के लिए भी कितना मुश्किल होगा ना अपने खुद के पर्सन को जो उनके साथ है उसके पास, इसलिए उसका मतलब भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। इसलिए हमें जब भी हम किसी भक्त को देखें या किसी भक्त के साथ इंटरैक्ट करें वी हैव टू बी सो केयरफुल बिकॉज ये लोग नॉर्मल पीपल नहीं है, ये जो आए हैं हमें जो भक्ति में लेके आते हैं कितना बड़ा उपकार जो हमारे ऊपर में कर रहे हैं, वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब देखो इस दुनिया में कितने लोग भक्त है, करोड़ ऑफ पॉपुलेशन होगा, मुझे नहीं लगता इतने करोड़ ऑफ पॉपुलेशन में 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी डिवोटीज होंगे, और सपोज अगर हो भी तो उसमें कितने लोग एक ऑथेंटिक परंपरा से है या सही मार्ग दिखाते हैं वो भी हमें पता नहीं है। उसका मतलब डिवोटीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, इतने इजीली अवेलेबल नहीं है, और जब हमें अवेलेबल हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा वैल्यू उनकी करनी चाहिए। कभी कभी हम छोटी छोटी बात पे भक्तों से नाराज हो जाते हैं, कभी कभी मैं देखती हूँ भक्त लोग छोटी छोटी बात पे बोल देते माता जी मुझे उस डिवोटी का बात करने का तरीका पसंद नहीं है, मुझे उस डिवोटी का स्टाइल पसंद नहीं है, मुझे उस डिवोटी का व्यवहार पसंद नहीं है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस डिवोटी मिलना कितना मुश्किल बात है, किसी डिवोटी का एसोसिएशन आपके जीवन में मिलना कितना, और आप छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हो। जो भगवान का नाम लेता है वो साधारण जीव है ही नहीं, इतने करोड़ों लोग में कितने लोग भगवान का नाम लेते हैं, तो कोई तो सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है, सब में तो कोई ना कोई त्रुटि होगी, लेकिन वो भगवान का भक्त है तो हमें उसके साथ रिश्ता रखना चाहिए। मुझे याद है ये एक कहानी, जैसे श्रील प्रभुपाद जी का एक पास टाइम में बुक में आता है, कैसे बोस्टन मंदिर में शुरुआत में, बोस्टन मंदिर बहुत छोटा था तो बहुत सारे नए भक्त ज्वाइन होते थे, तो तब एक पीटर नाम का भक्त वहाँ पे ज्वाइन हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा गंदा गंदा सा रहता था, इतना नीट एंड क्लीन नहीं रहता था। तो बोस्टन मंदिर छोटा था तो जो सीढ़ियाँ होती है सीढ़ियों से आप ऊपर जाओ, ऊपर में मंदिर है, नीचे वो जो स्टेयर डोरवे जैसा बोलते हैं ना स्टेयरकेस की नीचे वाली जगह, ये भक्त यहाँ पे रहता था, नया नया ज्वाइन हुआ था, काफी गंदी तरह से अपने कपड़े रखता था, साफ सूफ नहीं रखता था, तो दूसरे भक्त उसको टोकते थे कि काइंडली थोड़ा सा नीटली अपना चीजें रखा करो, क्योंकि लोग आते जाते हैं मंदिर में तो गंदगी देखेंगे तो मंदिर में अंदर में आना बंद कर देंगे, लेकिन कितना भी बोलो किसी की बात नहीं सुनता था। अब सारे भक्तों ने उसको बुलाना शुरू कर दिया क्रेजी पीटर, क्रेजी, किसी की बात नहीं सुनता है, क्रेजी है। अब एक बार उस मंदिर के जो अध्यक्ष थे सत्स्वरूप महाराज, उन्होंने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी कि हम लोग काफी तंग हो गए इसके बिहेवियर के वजह से, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि मंदिर से चला जाए। तो फिर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर जवाब लिखा सत्स्वरूप महाराज को। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि टॉलरेट हिम जस्ट लाइक आई एम टॉलरेटिंग यू पीपल, मैं जिस तरह से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ उस तरह से आप उसको बर्दाश्त करिए। अब भक्त लोग, जब प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन आ गया तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, डिवोटीज कुछ नहीं बोल रहे, बहुत साल हो गए। श्रील प्रभुपाद जी भगवत धाम चले गए। उसके बहुत सालों बाद एक बार गिरिराज महाराज, जो बॉस्टन मंदिर में उन्होंने देखा था इसको, वो लॉस एंजलिस मंदिर गए थे। वहां पे सुबह गुरु पूजा हो रही थी और गुरु पूजा में उन्होंने दूर से देखा कि वो क्रेजी पीटर खड़ा था। तो उसने फिर दूसरे भक्त को पूछा कि अरे ये अभी भी इस्कॉन में है, मुझे तो लगा इसने इस्कॉन छोड़ दिया होगा। ये तुम, उसने पूछा कौन, बोले वही जो जो खड़ा है ना सामने, क्रेजी पीटर। तो फिर वो भक्त ने बोला कि आप क्या बोल रहे मुझे पता नहीं, लेकिन आप जिसकी तरफ उंगली दिखा रहे हो वो कुशाग्र प्रभु है, और उन्होंने ही श्रील प्रभुपाद के जा रहे जो ये जो हमारे संस्कृत भजन जो हम डेली गाते हैं ना, वो सारे उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। और गिरिराज महाराज को चक्कर आ गए, क्या क्रेजी पीटर जिसको हम सोचते थे वो कुशाग्र प्रभु है, जिसके वजह से आज हम भक्ति जीवन में ये जो भजन लगन गा पा रहे हैं सारे संस्कृत से इंग्लिश उन्होंने लिखे है। अब यू नेवर नो कौन क्या करने के लिए आया है, किस काम के लिए इस भौतिक जगत में आया है। शायद एक्सटर्नली वो ऐसा वैसा लगे, बट वी रियली डोंट नो अंदर में उसके लेवल क्या है। वी शुडंट बी जजमेंटल। कोई अगर भक्ति जीवन में आता है, भगवान का नाम अगर एक बार भी लेता है, बस हमें उसको भक्त जितना रेस्पेक्ट देना चाहिए। मुझे याद है प्रभुपाद जी की लीलामृत में आता है कैसे एक बार कलकत्ता मंदिर में एक आदमी आता था जो शराब पीता था, तो भक्त लोग बहुत इरिटेट होते थे उससे कि ये बार बार आ जाता है, रोज शाम को संध्या आरती में आ जाता है। तो भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास गए और उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला कि क्या हम इसको बोले क्या मंदिर में ना आए, क्योंकि इतनी स्मेल आती है, वो शराब पी के आ जाता है और फिर पीछे बैठ के पूरी आरती देखता है। प्रभुपाद जी ने बोला कि आने दो, क्या है, भगवान का नाम ही तो सुन रहा है, आरती तो देख रहा है, उसको आने दो। अब भक्तों को इरिटेट होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी की बात तो मना नहीं कर सकते। अब एक दिन वो इतना ज्यादा पी के आ गया, इतना ज्यादा पी के आ गया कि मंदिर में जैसे आया एकदम गिर गया फ्लोर के ऊपर। अब तो सारे डिवोटीज एकदम भागे प्रभुपाद जी के पास। अब हम पहले ही बोला था, अभी देखा वो इतना ज्यादा आज पी के आ गया, प्रभुपाद जी आया सीधा खड़ा भी नहीं हो सका, सीधा मंदिर में गिर गया। प्रभुपाद जी इतने खुश हुए, क्या सच में वो गिर गया, क्या प्रभुपाद वो मंदिर में गिर गया। अब भक्तों के सामने नहीं आ रहे उसमें, खुश होने की क्या बात है। और प्रभुपाद ने बोला सी उसने भगवान को प्रणाम किया, कितनी बढ़िया बात है, फाइनली इतना दिन से जो आरती देख रहा था आज देखो भगवान को प्रणाम भी कर दिया। अफकोर्स प्रभुपाद जैसे ग्रेट डिवोटी हर एक भक्त में कुछ ना कुछ गुण देखते हैं, और शायद हम जैसे साधारण भक्त हर एक भक्त में वो गुण ना देख पाए, पर एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम क्रिटिकल ना हो। अगर हमें कोई चीज ना समझ में आए, स्पेशली हमें अगर किसी का व्यवहार ना समझ में आए और हमें शायद बाहरी भाव से वो व्यवहार ठीक ना लगे, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, किसी और भक्त के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। बट हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो हमें पता नहीं है किसका क्या रोल है, किसको किस लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो इसीलिए हम बोला गया है तव निज जन कुनो महाजन पाठी या दिले तुम्हें। ठाकुर जी आप कितने आप दयालु हो। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि आपके अपने भक्त को आपने भेजा है हमारे लिए। हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। दया करो मोरे पतित देखिया, दया करो मोरे पतित देखिया, दया करो मोरे पतित देखिया, दया करो मोरे पतित देखिया।
কহিল আমারে গিয়া, ওহে দিন জানা শুন ভালো কথা, ওহে দিন ওহে দিন জানা শুন ভালো কথা, উলা সীতা হোগে উল্লা সীতা হোগে হে মুনা দুর্মাতি সংসার ভিতরে উড়িয়াছি নুয়ামি, হে মুনা দুর্মাতি সংসার ভিতরে উড়িয়াছি নুয়ামি।
খুব সুন্দর বাত ইহা পে বোল রে হে, দয়া করো মোরি পতিতা দেখিলা। ভক্তিরাম ঠাকুর বোল রে হে कि जब उस महाजन ने देखा कि मैं जो हूँ थोड़ा आईसीयू पेशेंट हूँ, तब पति तो देखिया, मतलब मैं जैसे आपको पता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको ओपी कार्ड देते हैं आउट पेशेंट, मतलब आप जाओ मेडिसिन लो आप घर जा सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा बीमार है उसको आईसीयू में डालते हैं क्योंकि डॉक्टर की 24 आवर्स सुपरविजन उसको जरूरत है। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो महाजन आए जब उन्होंने मुझे देखा तब उनको समझ में आ गया ये तो ओपी पेशेंट नहीं, ये तो आईसीयू पेशेंट है। दया करो मोरी पति तो देखे, उसको पता चला ये तो बहुत पति थे, इसको बहुत ज्यादा दया की जरूरत है। फिर उसने क्या किया, कही लो अमर गिया, फिर मेरे पास में आए और उन्होंने मुझे कहा। कितनी सुंदर बात यहाँ पे बताते हैं, जो भक्त होता है उसको बहुत जल्दी किसी पे भी दया आ जाती है। भक्त का जो हृदय होता है वो बहुत निर्मल होता है। आप देखो इसलिए अर्जुन को भगवान ने गीता अर्जुन को ही क्यों बताई, बहुत सारे थे लेकिन अर्जुन का जो हृदय था वो बहुत निर्मल था। अर्जुन का हृदय कठोर नहीं था, ही हैड ए कंपैशनेट हार्ट। उसने कितने सारे तर्क दिए, मैं नहीं चाहता इतने सारे लोगों का, यू नो स्त्रियों का क्या होगा, इनका क्या होगा, पाप लगेगा, हमारे फैमिली मेंबर्स ही मर जाएंगे तो हम कैसे एंजॉय कर पाएंगे। कितना कंपैशन था उसके हृदय में। जो भक्त होते हैं बाय नेचर बहुत कंपैशनेट होते हैं, पर दुखे दुखी, किसी को भी दुख में नहीं देख सकते हैं, इमिडिएटली वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन साधारण भौतिक जगत के लोगों का नेचर कैसा होता है, पर दुखे सुखी, कोई दुख में है तो उन्हें अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे एक आदमी को पूछा गया कि भाई तुम रोज न्यूज़पेपर किस लिए पढ़ते हो, तो उसने कहा मैं इसलिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, सब लोग दुखी है इस दुनिया में। जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तब लगता है कोई ना कोई दुख की वार्ता आती है ना, किसी का कोई मर गया, किसी का कुछ हो गया, तब मुझे थोड़ी सी सांत्वना मिलती है कि मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, सारे दुखी है इस दुनिया में। तो भौतिक जगत के लोगों को दुख इस बात का नहीं है कि उनके जीवन में कुछ अभाव है, उनको तभी दुख लगता है जब सिर्फ उनके जीवन में वो अभाव है और बाकी सबके पास में वो चीज है तब उन्हें दुख लगता है। अगर सारे दुखी है तो उन्हें बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, बिकॉज एवरीबॉडी इज ऑन द सेम लेवल। लेकिन जो भक्त होता है वो पर दुखे दुखी, वो नहीं देख पाता है, उसका हृदय कोमल होता है, उसे इमिडिएटली सब पे प्यार आता है, सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। श्री प्रभुपाद भी बहुत सारे संदर्भ में बता चुके हैं कि जो डिवोटी होता है वो सैडिस्ट नहीं होता, उसका कोमल हृदय होता है। ना शुरुआत के दिनों में 1966 में श्री प्रभुपाद जी एक बार अपने शुरुआत के प्रवचन में थोड़े थोड़े जो हिपीज या थोड़े बच्चे जो आते थे यंगस्टर्स, उनको प्रवचन में बातों बातों में प्रभुपाद जी मैंगो के बारे में बता रहे थे, कैसे प्रभुपाद जी को मैंगो पसंद है और इंडिया में कैसे मैंगोज कितने टेस्टी और कैसे मैंगो इज लाइक यू नो ऐसा एक फ्रूट है, पीपल आर क्रेजी आउट ऑफ यू नो, ऐसे करते करते तो वहां पे जो लोग बैठे थे प्रवचन में उनको समझ में आ गया कि प्रभुपाद इज मे बी मिसिंग मैंगो खाने की उनकी इच्छा है। तो उस प्रवचन में एक लड़का बैठा था, इसका नाम था स्टीव, तो उसे लगा कि स्वामी जी के लिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर उनको मैंगो पसंद है तो एक काम तो कर सकता, मैं उनके लिए मैंगो लेके आऊंगा। बाकी तो मुझे कुछ आता नहीं, वो क्या चाहते हैं भी हमें समझ में आता नहीं आधी चीजें। तो उसने क्या किया, बहुत मेहनत करके एक डिपार्टमेंटल स्टोर से दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर में ढूंढता हुआ बहुत किलोमीटर चल के मेहनत करके वो मैंगो लेके आया प्रभुपाद के लिए, और फाइनली उन प्रभुपाद जी को मैंगो प्रेजेंट किया। तो प्रभुपाद जी काफी खुश हुए, उन्होंने स्माइल दिया, और ये लड़के को भी बहुत अच्छा लगा कि अरे कम से कम इस स्वामी जी के लिए हम और तो कुछ नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके लिए वो सब कुछ काफी नया था, वो गुरु वो सब समझना तो अभी उनके लिए बहुत ABCD में थे, लेकिन दे जस्ट फेल दैट वी वॉन्ट टू मेक दिस पर्सन हैप्पी, दैट्स इट। अगर ये पर्सन खुश हो और हमें स्माइल करे तो हमें अच्छा लगता है, हम कुछ भी कर सकते हैं उसे खुश करने के लिए। तो फिर पापा जी को मैंगो देते हैं। उसके 10 साल बाद 1976 में जब इस्कॉन की एनिवर्सरी मना रहे थे तो केक कटिंग कर रहे थे श्रील प्रभुपाद, और फिर थोड़े से प्रभुपाद इमोशनल हो गए, और फिर प्रभुपाद ने बोला दिस बॉय स्टीव ये उन दिनों में मेरे लिए कितना कष्ट करके मैंगो लेके आया था। तो ही वॉज वेरी फॉन्डली रिमेम्बरिंग दैट, एंड वॉज ऑफकोर्स सारे भक्त लोग वहाँ पे हंस रहे थे क्योंकि स्टीव की उम्र थी तब 26 ईयर्स, और those days 26 years was like a old person, because बाकी सब तो प्रोपा जी के मोमेंट में यंगस्टर्स ही थे, तो ये सबसे ओल्ड था। तो प्रोपा जी जब उसको बॉय बोल रहे कि दिस बॉय, तो सबको हंसी आ रही है। नाउ द स्टीव इज नोबडी बट सत्स्वरूप महाराज, जो आगे चल के सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी ने श्रील प्रोपा जी की लीलामृत लिखी। तो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जो डिवोटी होता है उसका हृदय बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दया करो मोरी, जब उस डिवोटी ने मेरे तरफ देखा, महाजन ने जो भगवान ने जिसको भेजा था, और उसने देखा कि मैं बहुत पतित हूं, तब उसने मुझे बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ बताना चाह रहा हूं, कही लो हमारे गिया। वो मेरे पास में आया और उसने कहा ओह दीना जन सुन भालो को था, बोला ओ दीन जन, दीन जन माने ओ पापी, इधर आओ मैं तुमको कुछ बताता हूं। अब यह समझने वाली बात है, भक्ति विनोद ठाकुर कोई पापी नहीं है, वो तो प्योर डिवोटी है, लेकिन वो अपने आप को पापी बोल रहे हैं, और बोले कि उस महाजन ने बड़े प्यार से बोला कि ओ दीन जन इधर आओ, ओ दीन माने जो दुखी या पतित या, इधर आओ मैं तुमको एक अच्छी बात बोलता हूँ। कितनी सुंदर बात है यहाँ पे, जिसको वो बोल रहे हैं महाजन जो भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति में अपेरेंटली जो वहां पे बताना चाह रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू शो द कंपैशन ऑफ द पर्सन। एक्चुअली जैसे इवन इन प्रभुपाद लाइफ अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी बहुत बार ये वर्ड यूज करते थे फूल एंड रास्कल। कभी कभी कोई सोच सकता है कि ऐसा शब्द क्यों यूज करते हैं प्रभुपाद, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा आ रहा है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा नहीं कह रहे उनकी भाषा ही ऐसी है सबको, उनको इतना ज्यादा प्यार आ रहा है कि वो प्यार से बोलते कि तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम लोग को क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि जो लोग नास्तिक होते हैं उनके साथ में कैसे तर्क करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो तुम ऐसा एक्टिंग करो कि तुम नास्तिक हो और मैं तुमको तुम्हारे साथ में आर्ग्यूमेंट्स करूंगा। तो फिर डिवोटी ने बोला ठीक है, तो अब डिवोटी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रभुपाद जी उसका आंसर दे रहे, और हर बार प्रभुपाद जी आंसर देते समय बोल रहे यू फूल यू नो दिस इज यू रास्कल। फिर एक बार कॉन्वर्सेशन के बीच में डिवोटी स्टॉप हो गया, बोले प्रभुपाद आप नॉर्मली तर्क करिए ना, बार बार बीच बीच में फूल रास्कल क्यों बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज आई लव यू रास्कल, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं कैसे समझाऊं। तो प्रभुपाद जी जो ये बोल रहे हैं इट्स नॉट दैट उन्हें गुस्सा आ रहा है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इज नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर इज, ऐसा नहीं है, वो इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं कि वो प्यार से बोलते कि अरे बुद्धू तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी बोल रहे कि उस महाजन ने बोला कि ओ दीना जन मेरी बात सुनो, ओ दीना जन मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूँ। सी बट एट द सेम टाइम हम प्रभुपाद जी को कॉपी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि हम घर घर जाए और बड़े ओ पापी लोग आप घर में क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमारे संडे मंदिर में आइए इस्कॉन मंदिर में, फिर वो लोग क्या करेंगे सीधा सिक्योरिटी को बुला के आपको भगा देंगे। हम प्रोफेसर कॉपी नहीं कर सकते, हम ये तो हाथ जोड़ के आप कितने अच्छे हैं आप एक बार आइए मंदिर में, हम नहीं बोल सकते कि आप लोग पापी हैं। तो ये सिर्फ प्रभुपाद जी को सीट होता है, तो हमें प्रभुपाद जी बहुत प्यार से आउट ऑफ हिज हार्ट एंड कंपैशन इज सेइंग यू रास्क क्यों नहीं समझ में आता व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो बोलते ओहो दीना जन सुनो भालो को था, बोलते इस महाजन ने बोला कि एक बार आओ मैं तुमको कुछ अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। सी इवन अगर हम कभी कभी किसी को कुछ अच्छा भी बताया है अगर उसकी योग्यता ना हो तो उसे समझ में नहीं आएगा. सी फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेगुलरली पीता है ओके, और उसको ज्ञान है कि अरे मैंने आज थोड़ा ज्यादा पी लिया है, तो वो किसी को बोलेगा कि जरा मुझे आज घर छोड़ दो, मैंने थोड़ा सा ज्यादा पी लिया है, शायद मैं गाड़ी ठीक से ना चला पाऊं. लेकिन अगर किसी ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो गाड़ी चला भी लेगा, गिर भी जाएगा, गटर में पड़ा रहेगा. और गटर में गिरने के बाद अगर आप उसको बोलो थोड़ा सा मदद करो तो बोलोगे व्हाई आर यू टचिंग मी, आई एम फाइन, आई एम ओके. भाई भैया तुम गटर में हो, आई एम ओके, मुझे क्या प्रॉब्लम है. तो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में है या जो थोड़ा बहुत मटेरियल लाइफ से आकर्षित है उसको थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो मंदिर आते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जो ज्यादा ही मटेरियलिज्म में डूब गए उन्हें लगता है आई एम फाइन, मुझे किस लिए मंदिर आने की जरूरत है, मैं किसी को बुरा करता नहीं हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसमें गलत क्या है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो मुझे क्यों आना चाहिए मंदिर, मुझे क्या काम है. पर अब उनको कौन बताए कि भैया तुम ये जो सांस ले रहे हो ये हवा तुम्हारे पिताजी की है क्या, ये हवा तो भगवान की है, और ये जो तुम सूर्य की रोशनी ले रहे हो ये तो रिलायंस अंबानी की है, ये तो भगवान की है और तुम उसका बिल भी नहीं लेते हो, ये जो तुम पृथ्वी पे चलते हो, ये जो तुम पानी पीते हो, हर एक चीज भगवान की है, तो तुम्हें थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना. सही है, ये प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओ दीना जाना, सुनो भालू को था ये महाजन बोलते ओ पापी लोग, एक बार मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ अच्छा चीज बताना चाह रहा हूँ. क्या है वो अच्छा चीज, उल्लासित हो बेमाना. जिस तरह से छोटे बच्चों को बोलते हैं ना ये खाओगे तो अच्छा लगेगा, ये लोगे तो तुम्हें शक्ति आएगा, तुम स्पाइडरमैन जैसे स्ट्रांग बन जाओगे, वैसे यहाँ पे बोल रहे कि अगर तुम ये सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, मेरी बात का विश्वास करो. ये जो महाजन है ये बता रहे हैं कि अगर तुम इस मार्ग में जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, मेरी बात का विश्वास करो. लेकिन हमें विश्वास नहीं है, अगर हमें विश्वास होता तो हम भक्ति में कितना आगे बढ़ जाते. शास्त्र तो हमारे साथ ही है फ्रॉम एज ऑल टाइम्स, हमारे पास ये भगवद्गीता भागवत सब कुछ है, लेकिन हमें उस पर पूरा विश्वास नहीं है. यहाँ पे तो सब ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हमें गुरु की वाणी पे भी विश्वास नहीं है. हमें बोला गया है कि अगर तुम भक्ति में आओगे तो तुम्हें संपूर्ण आनंद मिलेगा, लेकिन वी आर डाउटफुल. राइट, इवन एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसे हम स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में भी देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइपोथेसिस. आप उस चीज को पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते पहले ही मुझे प्रूव कर दो, पहले किसी चीज को लेनी पड़ती है, फिर उस पर आपको रिसर्च करना पड़ता है, फिर आप उसको प्रूव कर सकते हो. उसी तरह से हम जब भक्ति जीवन में भी आते हैं वी हैव टू बिलीव कि हाँ मैं अगर ये करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, और उसको आप अपनाओ सीरियसली जेन्युइनली एंड सिंसियरली. उसके बाद में आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये सही है या नहीं, लेकिन हम शुरू से ही डाउटफुल हो जाते हैं. राइट, अगर आज मैं किसी को बोल दूं कि भैया अगर तुमको सागर नगर इस्कॉन मंदिर आना है तो तुम बस नंबर 9 ले लो आरटीसी से, और अगर वो बोले कि मैं क्यों माता जी की बात विश्वास करूं, मैं बस नंबर 9 क्यों लूं, शायद बस कंडक्टर माता जी को कमीशन दे रहा होगा, मैं बस नंबर 8 में ही जाऊंगा. क्या होगा, 8 में जाओगे तो पद्दा वाल्टर मेंटल हॉस्पिटल में वही है पागल खाना, वहां पहुंच जाओगे. विश्वास तो करना पड़ेगा ना, तुम्हें विश्वास करके उस बस में बैठना पड़ेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे माइलस्टोन्स जब आएंगे तब तुम लोगे कि हाँ ये तो सही है, माता जी ने तो बोला था पहले ये दुकान आएगी फिर ये आएगी, ये तो सही है, सही मार्ग में मैं जा रहा हूँ. उसी तरह से भक्ति में भी शुरुआत में हमें शास्त्र की बात गुरु की बात एज इट इज लेनी है, उसके बाद जब हम उसको अपनाएंगे तब धीरे धीरे लगेगा हाँ ये तो सही है, यस आई एम फीलिंग बेटर, मेरी बुरी आदतों से मैं धीरे धीरे छूट रहा हूँ, हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे आनंद मिल रहा है. लेकिन पहले विश्वास को करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बोल रहा है ओहे दीना जाना सुनो भालो कथा, ये बात सुनोगे तो उल्लासित होबे मन, तुमको आनंद मिलेगा. कौन बोल रहा है ये, महाजन. कोई कंफ्यूजन, सो तो नहीं गए सारे, हाँ समझ में आ रहा है ना. हिंदी बोलने में यही मुझे प्रॉब्लम, मुझे आधा टाइम समझ में नहीं आता, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं. तुम्हारा तारीते श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारा तारीते श्री कृष्ण नवद्वीपे अवतार, तुम है नो को था दिन ही न जाने
लेना भव पारा। कुरी लेना भव पारा। हे मुना दुर्माती संसार भीतरे पड़िया छिनो आमी। हे मुना दुर्माती संसार भीतरे पड़िया छिनो आमी।
बहुत सुंदर बात यहाँ पे बोल रहे हैं, तुम्हारा तारी ते श्री कृष्ण चैतन्य। इस महाजन ने इतनी सुंदर बात बोली, तुम्हारा तारीते सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। आजकल की मॉडर्न लाइफ में सबको सब कुछ कस्टमाइज्ड बहुत अच्छा लगता है, किचन भी कस्टमाइज्ड चाहिए, हर एक चीज कस्टमाइज्ड चाहिए ना। इसलिए ये कितना बिजनेस आगे बढ़ रहा है, आप एक कप खरीदो उस पर भी कस्टमाइज आपका नाम लिखा हो। यू वांट दैट, यू हैव टू केयर फॉर इट। आपको हर चीज पर्सनल चाहिए, राइट? जैसे अगर आज कोई आके यहाँ पे बोल दे कल हमारे घर में ये है आप लोग सब आ जाइएगा, तो उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आपको पर्सनली एक एक बार फोन करके जरा आइएगा जरूर आपके फैमिली के साथ, आपको कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी महाजन भक्ति विनोद ठाकुर को बोल रहे तुम्हारे लिए आए जस्ट फॉर यू। अब आप सोच सकते हो माता जी, बट ये तो सच नहीं है ना माता जी, भगवान तो सबके लिए आए हैं ना, सारे सारे जीवों का उद्धार करने आए हैं। नहीं, ये सच है, भगवान सिर्फ आपके लिए आते हैं। क्यों मैं बताती हूँ, अब भगवान तो ऐसे नहीं है ना हमारे जैसे कि अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ यहाँ बैठी हूँ, मैं वहां नहीं रह सकती। भगवान तो ओमनीप्रेजेंट है, भगवान कस्टमाइज्ड है, हर एक के हृदय में आपके अपने सेट ऑफ भगवान है। जरूरी नहीं है कि बस एक भगवान है, इतने लोगों में डिवाइड हो गए तो शायद मेरी बात सुनी है या नहीं सुनी है। परमात्मा के रूप में हमारे सबके हृदय में वो है, और वो सिर्फ हमारे है, सिर्फ हमारे, और किसी के साथ हमें उनको शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। और सब अगर हम इस शरीर को छोड़ के कोई और योनि में चले जाए, या तो नीचे या तो ऊपर, जहां भी जाए, अगर हम एक इंसेक्ट भी बन जाए, एक लिजर्ड भी बन जाए, वहां भी वो हमारे साथ आएंगे। और अगर हम कोई मल मूत्र कोई स्टूल में छोटे इंसेक्ट भी बन जाए बिकॉज ऑफ आवर बैड कर्मा, वहां भी वो आएंगे। वहां भी वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि लुक इट्स वेरी स्मेली आउट हियर, यहाँ पे बहुत स्मेल आ रहा है, नेक्स्ट लाइफ जब तुमको अच्छा बॉडी मिलेगा तब मैं आऊंगा, तब तक यू जस्ट बेयर। इवन देयर ऑल्सो आपके साथ ही है, आप कहीं भी जाओ ही डजंट लीव यू। सो कस्टमाइज है, आपके लिए ही आए है चैतन्य महाप्रभु, हैज कम फॉर राइट, आपके लिए आए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारा तारीते श्री कृष्ण चैतन्य, हर एक जीव के लिए, भगवान के लिए हर एक जीव इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर इस दुनिया में सारे गोलोक वृंदावन चले जाए, अगर एक दो जीव भी रह जाए तो उसके लिए भी भगवान उतना ही रोते हैं। सी हम लोग सोचते हैं, हम लोग को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर में जो ठाकुर जी है वो एक्चुअली सफर होते हैं क्योंकि वो हमें मिस करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके पास जल्दी से वापस आ जाए। जब हमें कोई दुख होता है इस भौतिक जगत में, तब भगवान इतने दुखी नहीं होते हैं जितना दुखी वो इसलिए है कि हम उनसे दूर है। एवरी डे वो ऐसा सोचते हैं कि दिस जीवा इज मिसिंग द प्रिविलेज ऑफ एसोसिएटिंग विथ मी, ये जीव मुझसे दूर है, आनंद नहीं कर पा रहा है, मेरे पास आएगा तो कितने आनंद कर पाएगा। इस जीव को नहीं समझ में आ रहा है, उस बात को लेके ठाकुर जी दुखी होते हैं। और हर एक जीव के लिए वो आंसू बहाते हैं, हर एक जीव जो उनको भूल चुका है, एक छोटी सी एंट हो या इंसेक्ट हो, उसके लिए भी भगवान रोते हैं कि ये कब मेरे पास वापस आ जाएगा ये जीव। कस्टमाइज एवरी जीव के लिए। तो यहाँ पे बोले तुम्हारा तारीते श्री कृष्ण चैतन्य, कहाँ आए, नवद्वीप में अवतार लिए। जब ठाकुर जी ने देखा कि मैंने तो भगवद्गीता बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सर्वधर्मान परित्यज्य करना चाहिए, इसलिए वे खुद आ गए समझाने के लिए कि देखो ऐसे करना चाहिए। और फिर वो बन गए ना सन्यासी, उन्होंने अपनी माता का त्याग किया, अपनी पत्नी का त्याग किया, वो सन्यासी बने और कहां इतनी जगहों में वो घूमे और सबको हरिनाम का दान किया कि भगवत धाम वापस
ले जाने के लिए, तो बोल रहे हैं कि नवद्वीप में अवतार किया, तुम है नो को था नहीं ही न जाने। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, जैसे कभी कभी ना, जैसे हम सपोज हमको कोई प्रॉब्लम है, या समझिए घुटनों में दर्द है या कुछ है, तो कभी कभी हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं, अच्छा आपको पता नहीं बहुत फेमस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, आप वहां जाइए अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो एक लाइन वहां पे ऐड कर दे, अरे इतने लोगों को क्योर किया है, आपका घुटने का दर्द तो कुछ भी नहीं है, किसी किसी का तो दो दो घुटने घस चुके थे फिर भी उन्होंने ठीक कर दिया। जब लोग बोलेंगे अच्छा मेरा अपॉइंटमेंट ले लो, हमें हमेशा ये प्रूफ चाहिए कि पहले भी किया था क्या, मतलब ऐसे मेरे जैसा केस आया था क्या, तो फिर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हारे जैसे तो बहुत लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने तार दिया, तुमसे भी जो बॉस थे, तुम्हारे से भी जो दूर दूर थे उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने तार दिया, तो तुम क्या चीज हो, तुमको भी तार देंगे, तो हमें और भी सांत्वना मिलती है। अच्छा नहीं तो मैंने तो सोचा था हम ही सबसे बेकार के है, लेकिन अच्छा हमसे भी है कोई, फिर तो हमारा नंबर आ सकता है। बोले तुम हेनो को था दिन ही न जाने, तुम्हारे जैसे कितने हीन जिनको उन्होंने तार दिया है, कोरी लो नो भव पार, बहुत सारे लोगों को उन्होंने भव पार करा दिया है। यहाँ पे बताते हैं नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट स्टैंजा में चले जाएंगे। वेदेर प्रतिज्ञा रखी बार तारे, वेदेर प्रतिज्ञा रखी बार तारे, वेदेर प्रतिज्ञा रखी बार तारे, रूपम वर्ण विप्रसूता, महाप्रभु नामे नदिया माताया, महाप्रभु नामे नदिया माताया, महाप्रभु नामे नदिया माताया, संगे भाय अवधूता, यहाँ पे बोल रहे हैं वेदेरा प्रतिज्ञा, वेद में जो प्रतिज्ञा आती है ना, भगवद गीता में भगवान की एक प्रतिज्ञा है ना, क्या बोलते हैं भगवान, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, और फिर बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आऊंगा जब भी धर्म का डाउनफॉल होगा मैं उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए फिर से आऊंगा, साधुओं को बचाने के लिए मैं फिर से आऊंगा। और फिर अर्जुन को एक प्रॉमिस भी देते है ना, नमें भक्त सुनिश्चित, तो यहाँ बोलते कि वेदेर प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी उसका पालन करने के लिए वो आए हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। कैसे आए हैं, रूपम वर्ण विप्रसूता, विप्रसूता माने ब्राह्मण के बेटे के रूप में आए हैं, और रूपम वर्ण माने जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, सुनहरे कॉम्प्लेक्शन में वो आए हैं। लिखा है महाप्रभु नामे नादिया, नादिया मताया, मताया माने मत, माने जो मत में होता है ना, जैसे पिया हुआ इंसान कैसे होता है, तो बोलता है कि पूरे नादिया को भगवान की भक्ति में उन्होंने डुबा दिया ना, तो बोलते हैं महाप्रभु नामे, महाप्रभु के भाव में, राधा रानी के महाभाव में वो आए हैं और पूरे नादिया को उन्होंने भक्त बना दिया है। हम देखते हैं ना कि चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि ठाकुर जी ने कुछ लोगों को छू के भक्त बना दिया, कुछ लोगों ने सिर्फ भगवान को देखा और भक्त हो गए, कुछ उनकी मीठी बातें सुन के भक्त हो गए, कुछ उनका प्रकाश देख के सिर्फ भक्त हो गए। प्रकाशानंद सरस्वती जो थे उससे चैतन्य महाप्रभु के शरीर से जो कांति आती है उसमें वो इम्प्रेस हो गए कि अरे आप कितने उज्ज्वलित, कितने सुंदर लगते हो आप हैं। हम देखते हैं कि टच से भी कितने लोगों को, जैसे इवन झारखंड के जो एनिमल्स थे उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना दिया, सिंह एलिफेंट सब हरे कृष्णा गान करके नाचने लगे थे। और अगर हम देखते चैतन्य महाप्रभु के बचपन की एक कहानी आती है, कैसे वो एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को लेके आते हैं घर, और फिर उसकी माता बोलती है कि तुम इसको नहीं रख सकते क्योंकि हम तो ब्राह्मण कुल के हैं, और ब्राह्मण जो है कुत्तों को नहीं रखते, वो तो गाय को रखते हैं, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु नहाने जाते हैं तब उनकी माँ जो है उसको छोड़ देती है। चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तब, तो फिर आके रोते हैं कि आपने क्यों उसको छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उसको गोद में लिया था, उसके ऊपर हाथ दिया था, तो थोड़े दिन के बाद वो क्या देखते हैं, वो कुत्ता भी हरे कृष्ण करता 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 अपने शरीर को छोड़ देता है। तो कुछ को छू के उन्होंने भक्त बना दिया, कुछ को सिर्फ उनको देखते, कुछ को उन्होंने अपनी विनम्रता से भक्त बना दिया। जब वे संन्यास लेने के बाद पहली बार जगन्नाथपुरी गए तो वहां पे जगन्नाथ जी को देख के चैतन्य महाप्रभु अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गए मंदिर में। तो मंदिर के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने बोला कि कौन है ये, इसको हटाओ यहाँ से। बहुत सारे लोग होते हैं रास्ते में कहीं सोने की जगह नहीं होती तो ऐसे ही मंदिर में आके सो जाते हैं, इसको यहाँ से निकालो। तो तब वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य आए। सार्वभौम भट्टाचार्य एक्चुअली बृहस्पति है, देवताओं के गुरु है, चैतन्य लीला में वो सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में आते हैं। तो वो रोकते कि नहीं नहीं उसको ऐसा मत करो, ये सन्यासी कोई अच्छा ही लग रहा है। तो फिर वो सोल्जर्स की मदद से, जो सिक्योरिटी होते हैं उनकी मदद से वो अपने घर में ले जाते हैं। और अपने घर में ले जाने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु को होश आता है तब उनको प्रसाद खिलाते हैं, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको थोड़ी एडवाइस देते हैं। बिकॉज वो मायावादी थे तब, उनको पता नहीं कि ये भगवान है, तब देखने में अच्छे थे तो उनको अट्रैक्ट हो रहा था उनकी तरफ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं कि भाई देखो, एक तो तुम यंग हो, चैतन्य महाप्रभु तो 24 साल में संन्यास ले गई थी, जस्ट 24 जब उन्होंने संन्यास लिया, वो तो एक तो तुम यंग हो, दूसरा तुम हैंडसम बहुत हो। अब तुम्हारा संन्यास अगर तुमको ठीक रखना है तो मैं तुमको एक एडवाइस देता हूँ, यहां वहां ऐसे ऐसे घूमो मत, एक काम करो बैठ के थोड़ा स्क्रिप्चर्स पढ़ो, अपने मन को स्क्रिप्चर्स में लगाओ, तब अपना ध्यान उधर लगाओ ना तो सब तुम्हारा ठीक रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते ठीक है। तो बोलते है कि एक काम करो, कल से मैं जो है तुमको शास्त्र समझाऊंगा, समझाने से तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तुम्हारा मन जो है इसमें लगा रहेगा ज्ञान में। चैतन्य महाप्रभु बोला ठीक है। तो 7 दिन तक कंटिन्यूसली सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को सुनाते रहे शास्त्र, और चैतन्य महाप्रभु बहुत ही विनय भाव से, जैसे कि उन्हें कुछ नहीं आता, सुन रहे हैं। 7 दिन हो गया, रात हो गया, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। अब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यूजुअली ये बोध समझना इतना डिफिकल्ट होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछेगा कि मुझे एक्सक्यूज मी हैव स्टॉप करें, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे। एट द एंड ऑफ द 7th डे सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जा रहा है कि नहीं माथा में, मैंने क्या बोला, कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोला लेकिन आपने बोला था कि सुनना है, आपने ये नहीं बोला था कि प्रश्न पूछना है। तो बोला कि मैं अब बोल रहा हूँ, प्रश्न पूछो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु, लेकिन मुझे तो कोई प्रश्न आ नहीं रहा है, इनफैक्ट आप जो समझा रहे हो बहुत कंफ्यूजिंग है, आप गलत समझा रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। तब सर्वा भट्टाचार्य ने सोचा कि ये क्या बोल रहे, मैं क्या गलत बताया मैंने, बताओ। और फिर जो है वो दोनों का डिस्कशन शुरू होता है, और जब चैतन्य महाप्रभु बोलने लगते हैं तब सार्वभौम भट्टाचार्य सोचते हैं, अरे बाप रे, इसको इतना ज्ञान, ये फिर इतने दिन से चुप क्यों बैठा था। मतलब उसको इस बात का इंप्रेस हो गए कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कोई इतना विनय हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है। एक बार तो मन में आएगा ना बोलने के लिए कि भाई मुझे पता है आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, उससे वो इंप्रेस हो गए। और ऑफकोर्स उसके बाद ठाकुर जी उसको, उनको जो है दर्शन देते हैं, पहले विष्णु का रूप, फिर कृष्ण का, और फिर अपने जो सारे षडभुज के रूप में वो दर्शन देते हैं, और फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य भी भक्त बन जाते हैं। लेकिन अपनी विनम्रता से जो है उन्होंने उनको भी भक्त बना दिया, और किसी किसी को अपने मीठे बोल से भी भगवान ने भक्त बना दिया। जैसे वो एक कहानी आती है, कैसे उनके ही लाइनेज में एक ब्रह्मानंद भारती बोल के उनके गुरु के गुरु भाई जैसे बोलते ना, गॉड ब्रदर थे। तो एक बार ब्रह्मानंद भारती चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते हैं, तो उनके सेक्रेटरी बोलते हैं कि ब्रह्मानंद भारती आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो उनको मैं अंदर लेके आऊं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं उसको अंदर मत लेके आओ, क्योंकि वो मेरे गुरु के गुरु भाई है, तो मेरे लिए पूजनीय है, तो मैं बाहर जाके उनको उनसे बात करूंगा। तो जैसे वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि ब्रह्मानंद भारती ने डियर स्किन पहना हुआ है। तो अब डियर स्किन तो मायावादी लोग पहनते हैं, और सन्यासी इसका रोब अलग होता है। तो अब चैतन्य महाप्रभु उनको डायरेक्टली तो एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने गुरु के गुरु भाई है, तो इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या करते हैं ना, एकदम उनके सामने नहीं देख के, मुकुंद के सामने देख के बोलते हैं, तुमने तो कहा था कि ब्रह्मानंद भारती आए हैं, ब्रह्मानंद भारती तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मानंद भारती थोड़ी डियर स्किन पहनेंगे, वो थोड़ी ऐसा करेंगे, चलो चलो तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, बोल के अंदर आ जाते हैं। अब ब्रह्मानंद भारती को समझ में आ जाता है कि चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा मेरा ये डियर स्किन पहनना, तो फिर वो इमीडिएटली उसको गिव अप करके सन्यासी रोब पहन लेते हैं। तो इमीडिएटली अपनी विनयता, विनम्रता से, अपने मीठे बोल से, अपने टच से, अपने दर्शन से कितने लोगों को उन्होंने भक्त बना दिया। इनफैक्ट जब चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में जब इधर आए थे वो, तो बचपन से ही जैसे उनका जन्म हुआ तब से वो सबको चैंटिंग कराना शुरू कर दिए थे, क्योंकि आसपास की लेडीज जब उनके साथ खेलने के लिए आती थी तो उनको हमेशा हरि बोल या हरे कृष्ण बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो रोना शुरू कर देते थे। तो सबको समझ में आ गया कि अच्छा है, उसको हरि बोल बोलने से ही ये बच्चा हंसता है, नहीं तो ये रोने लगता है। तो शुरू से सबको जो है, पूरे नादिया ग्राम को जो है भक्ति में उन्होंने डुबा दिया था। तो बोलते महाप्रभु नामे नादिया माता है, आपने महाप्रभु के रूप में आप आए हैं और पूरे नादिया को भगवान की भक्ति में मत आपने कर दिया। और क्या किया, संगे भाय अवधूता, आपके साथ में आप किसको लेके आए, नित्यानंद प्रभु को लेके आए, जो कितने दयालु है, जगाई मधाई जैसे लोगों को भी उन्होंने भक्त बना दिया। नेक्स्ट स्टैंजा में जाएंगे, नंदा सोता जीनी चैतन्य गोसाई, निज नाम कौरी दाना, तारी लो जगता तुलियो जाइया, लोहो निज परित्राणा, हे मोना दुर्माते संसार भीतरे उड़िया चीनु आमी, हे मोना दुर्माते संसार यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंद सूत जीनी चैतन्य गोसाई, जो नंद महाराज के बेटे के जैसे आए थे वही कृष्ण अभी चैतन्य गोसाई चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। उसके बाद में बोलते हैं निज नाम कोरी दाना, किस लिए आए हैं, अपने नाम का दान करने के लिए आए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अपने नाम का दान करते हैं तो नाम के साथ में नाम में शक्ति भी तो वो डालते हैं। हम दीक्षा क्यों लेते हैं, दीक्षा के पहले भी तो हमारे कृष्ण महामंत्र करते हैं, दीक्षा के बाद भी वही मंत्र करना है। बहुत सारे लोग कभी कभी मुझे बोलते हैं कि माता जी हमने सोचा था कि दीक्षा मतलब समथिंग सीक्रेट, हमारा दीक्षा हो गया मतलब हमें कुछ स्पेशल मंत्र मिलेगा जो और किसी को पता नहीं है, लेकिन दीक्षा होने पर वो सप्रेस लेते हैं, अभी भी हरे कृष्ण मंत्र करते थे, पहले भी हरे कृष्ण मंत्र करते थे, तो फायदा क्या है। लेकिन जब दीक्षा होती है तो दीक्षा में नाम के साथ में गुरु उस मंत्र को करने की शक्ति भी देते हैं। गुरु आप, गुरु का जो भगवान के ऊपर में प्रेम है वो प्रेम भी हमें देते हैं और नाम को जप करने की शक्ति भी हमें प्रदान करते हैं। सी अगर केवल नाम में ही शक्ति होती, केवल नाम में, हम क्यों गुरु परंपरा से दीक्षा लेते हैं, हम क्यों गुरु का आश्रय लेते हैं, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु का आश्रय हम क्यों लेते हैं, बिना गुरु आश्रय लिए नाम करने से भी तो नाम तो पावरफुल है ना, लेकिन फिर भी हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जब गुरु के द्वारा उस चीज को दिया जाता है तो उसके साथ में गुरु की शक्ति भी होती है। सी अगर से उन दिनों में चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए सारे झारखंड के एनिमल्स को भी डांस करवाया था, सबको भक्त बना दिया था, अब वो सेम हरे कृष्ण महामंत्र अभी भी हमारे पास में है, अब हमारे मंदिर के पास में जू है, क्या हम जाके कोशिश करें, जू वालों को बोलते हैं कि जरा हमको लायन के केज में अलाउ करिए, हम थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, आप देखिएगा लायन डांस करने लगेगा क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पावरफुल है। दूसरे दिन ऑबिचुरी और कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों, नाम तो पावरफुल है ना, फिर क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, नाम के साथ में शक्ति देते हैं, नाम के साथ में वो शक्ति भी वो प्रदान करते हैं। सी बुलेट तो पावरफुल ही होता है, लेकिन बुलेट गन से आना चाहिए ना। अब केवल मेरे हाथ में बुलेट है और मैं आपके ऊपर बुलेट फेंकू तो आपको क्या होगा? आप कैच करेंगे, मैं कैच करेंगी, लेकिन आप बुलेट तो पावरफुल ही है ना, बुलेट में पावर है, लेकिन बुलेट गन के द्वारा आएंगे तो फिर बोलो करिंदा। गन से आना चाहिए ना, तो नाम जो है परंपरा में आना चाहिए ना, तभी तो उसका पावर होता है, राइट? सी, ये पता नहीं, शायद बहुत बार मैंने आपको ये कहानी बताई हो, कैसे एक शिष्य अपने गुरु से यही बात पूछता है कि आपने बोला था कि आप मुझे सीक्रेट मंत्र बताएंगे दीक्षा के बाद, लेकिन ये तो हरे कृष्ण महामंत्र तो सारे बोल रहे हैं। और फिर गुरु उनको पूछते क्या किसने बोला, तो बोला कि मैं जब रास्ता में आ रहा था तो रिक्शा वाला भी बोल रहा था, और मैंने देखा क्रिकेट खेलते हुए बच्चे भी बोल रहे थे हरे कृष्ण, हर एक धोबी जो कपड़े धो रहा था वो भी बोल रहा था, तो उसमें स्पेशल क्या है? तो फिर गुरु जी उसको एक डायमंड दे देते हाथ में, बोले जाके तुमने जिस जिस से ये नाम सुना सबको जाके बोलो कि मैं आपको बेचना चाहता हूँ, आप कितना दाम देंगे? तो रिक्शा वाला के पास जाता है डायमंड को लेके, तो रिक्शा वाला बोलता है मैं कितना दूंगा, 2 रुपए दूंगा, इसका मुझे क्या काम है, पूरा दिन रिक्शा चलाता हूँ ना तो एड़ियों में दर्द हो जाता है, तो थोड़ा सा मसाज कर लूंगा, इससे इसका इससे ज्यादा क्या दूंगा। अब बच्चों को दे दिया क्रिकेट जो खेल रहे थे, उन्होंने बोला ये तो बेकार की चीज है, बरम बॉल होता तो हम खरीद लेते, इसका हम क्या करेंगे, 10 रुपए देंगे उससे और कोई उससे ज्यादा हम कुछ नहीं दे सकते, शायद विकेट कीपिंग में बीच में ये स्टोन लगा सके। अब जब इसके पास में गए, धोबी के पास ले गए, तो धोबी ने बोला मैं कितना दे सकता हूँ, 20 रुपए, इसका मुझे क्या काम है, कपड़े में अगर कोई दाग है तो मैं उसको जोर से घिसूंगा तो दाग आ जाएगा। लेकिन जब कोई ज्वेलर के पास गया तो बोला अरे ये तो बहुत काम की चीज है, तो लाखों में इसका दाम है। अब सेम चीज है लेकिन अलग अलग लोगों ने उसकी अलग अलग वैल्यू दी है। अब नाम तो एक ही है, लेकिन जब तक कि आपका जमीन फर्टाइल ना हो तब तक कि आपको उस बीज का कोई फायदा होने वाला है, और गुरु परंपरा ये काम करता है ना। सी, अब बहुत सारे बीज है अगर उसमें, तो फिर कितना भी आप नाम जप करो उसका फायदा नहीं, पहले तो उस जमीन को साफ करना है, खोदना है, बीज को डालना है, पानी देना है, सींचना है, एक्सपर्ट की जरूरत है उसमें। तो उसी तरह से कि नाम तो सबके पास में है, लेकिन जब हम गुरु परंपरा के द्वारा वो आता है तो गुरु क्या करते हैं, उसके पहले आपकी साफ सफाई करते हैं, और नाम लेते हुए नाम के दौरान भी आपको ऑब्जर्व करते हैं। जब आप में कोई गलतियां होती है, आप में कोई त्रुटियां होती है, आपको टोकते हैं। अब जब आप गुरु के संपर्क में रहते हो तब आपका ईगो भी कम होता है, आप सेवा करते हो, वो एक पूरा प्यूरिफिकेशन पैकेज है। ओनली कभी कभी मैं जैसे देखती हूँ बहुत सारे भक्त जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तब वो सोचते हैं इस्कॉन में सीखने का क्या है, बस जॉब ही तो करना है तो मैं घर में भी कर सकता हूँ, मुझे डिवोटीज के एसोसिएशन का इतनी इम्पोर्टेंस क्या है, जॉब ही तो करना है मैं घर में कर लूंगा, भगवद गीता ही पढ़नी है घर में पढ़ लूंगा, यही है ना प्रोसेस। लेकिन उनको समझ भी नहीं आता था हायर प्रोसेस तो कुछ और है एक्चुअली, भक्तों के साथ में आना, उनके साथ में रहना, उनके साथ में रहते रहते कभी कभी किसी भक्त में हमें बुरा गुण दिखता है, कभी उनको हमें बुरा गुण दिखता है, सबके स्वभाव एक प्रकार के नहीं होते हैं, और एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को टॉलरेट करते हुए धीरे धीरे अपने ईगो को क्रश करते हुए आगे बढ़ना, भक्ति में निम्न सेवाएं करना, ये सब हमें भक्ति में आगे सेफ चैंटिंग से नहीं होगा, होल प्रोसेस ये पूरा एक पैकेज है, पूरा एक पैकेज है, राइट? जिस तरह से जब डायमंड होता है उसको जब रॉ निकालते हो तो पहले उसकी पॉलिशिंग करनी पड़ती है, उसको साफ करना पड़ता है, तभी वो चमकता है, और पॉलिशिंग के प्रोसेस बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है डायमंड के लिए, क्योंकि उसको मशीन के अंदर डालेंगे, उसको यहां वहां घिसेंगे और तब जाके वो अच्छा डायमंड बनेगा। तो उसी तरह से भक्त जब आप बनते हो, आप बोलोगे मैं घर में चैंटिंग करूंगा, ना किसी से एसोसिएट करना, ना मेरे को कोई माथाजिक हैप्पी से हूं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। जब आप भक्तों के साथ एसोसिएट करोगे तब थोड़ा सा वो आपको पिंच करेंगे, आपके ईगो को थोड़ा सा आप करोगे, और एक दूसरे का करते 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 डायमंड क्या है, सॉफ्ट बन जाता है। जैसे गंगा के किनारे वो पत्थर होते हैं ना, गंगा की वेव्स उसे मार मार के उसको सॉफ्ट बना देती है। जब आप मंदिर आते हो, भक्तों से एसोसिएट करते हो, सेवा करते हो, तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि कहाँ कहाँ आपके प्रॉब्लम्स है, राइट? सी इमेजिन, अगर आप कुछ चीज थियरी में पढ़ते हो तो वो अलग है, लेकिन एक्चुअली उसकी प्रैक्टिकल जब होती है तो वो बिल्कुल अलग है, राइट? अब हम थियरी में पढ़ते हैं कि वैष्णव मतलब उसको ऐसा रहना चाहिए, हम थियोरी में पढ़ते हैं कि वैष्णव मतलब टॉलरेंस होना चाहिए, वैष्णव मतलब ऐसा होना चाहिए, तो थियोरी में तो हमें लगता है बस इतना, ये तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप मंदिर आओगे, डिवोटी से एसोसिएट करोगे, कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपको कुछ गलत बोलेगा, और उसके बावजूद भी आप स्टेबल रह पाओगे, मतलब या प्रैक्टिकल लैब वर्क ओवर, ये लैब वर्क है, आप हम जो पढ़ते हैं उसका लैब वर्क होना चाहिए ना। भक्तों से एसोसिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा जब दूर से देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब पास आते हैं तो उसमें डार्क दिखाई देता है। जब हम भक्तों से दूर दूर से तब सब अच्छा लगता है, लेकिन जब हम पास आते हैं तब बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, और वो दिखाई देने के बावजूद भी अगर आप अपनी भक्ति में स्टेबल रह सकोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं नहीं बस दूर, नहीं, यू हैव टू गेट इन एंड यू हैव टू फेस इट एंड देन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आपको समझ में आ रहा है? तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे भक्ति में, राइट? तो एनीवे कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे बोल रहे हैं निज नाम करी दाना। चैतन्य महाप्रभु ने अपना खुद का नाम दान किया, उसमें अपनी शक्ति को इन्फ्यूज किया। और फिर बोल रहे हैं तारी लो जगत तुम ही हो जाए, उस तरह से उन्होंने पूरे जगत का तारण किया। गुरु की शक्ति के बिना थियरी रह जाएगी। बहुत सारी बार मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ, कैसे रामानुजाचार्य का एक शिष्य था दासरथी, और जब वो रामानुजाचार्य का शिष्य नहीं था, एक बार रामानुजाचार्य जब वो श्रीरंगम में जा रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा कि एक आदमी जो है वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और बहुत अटैच्ड है, तो वो अपनी वाइफ के ऊपर में अम्ब्रेला लेके चलता है, और वो भी सीधा नहीं चलता है, उल्टा उल्टा चलता है सो दैट वो उसका फेस देख सके। तो रामानुजाचार्य बहुत हंसते हैं, अपने शिष्य को बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो उनके शिष्य बोलते हैं बहुत फेमस है यहाँ पे, सब जानते हैं, अपने बीवी के पीछे पागल है, सब समय उसकी बीवी को देखते रहता है। तो रामानुजाचार्य ने बोला उसको एक बार बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सारे ने बोला गुरु जी उससे क्यों बात करना, वो कोई भक्त नहीं है, हम लोग चलो आगे चलते हैं। नहीं नहीं मुझे उससे ही बात करना है। उसको बुलाया, बोला तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं मैं मेरे बीवी की तरफ देख रहा हूँ। बोलता क्यों? मेरी बीवी की आंखें इतनी सुंदर है, मुझे लगता है 24 घंटा देखते रहूं, मैं एक मिनट भी देखे बिना नहीं रह सकता। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि अगर मैं तुमको ऐसी किसी की आंखें दिखाओ जो तुम्हारी बीवी की आंखें से भी सुंदर हो तो? उसने बोला ऐसी पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं कल से मेरी बीवी की आंखें देखना बंद कर दूंगा। तो रामानुजाचार्य बोला चलो चैलेंज, कल सुबह आ जाना अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे। अर्ली मॉर्निंग कौन सुंदर दिख सकता है? अर्ली मॉर्निंग तो जो सुंदर है वो भी सुंदर नहीं दिखते हैं। बोले आ जाना सुबह। सुबह सुबह वो आ जाता है, बताइए किसकी आंखें दिखनी है। और रामानुजाचार्य उनके हाथ पकड़ते हैं और अंदर में लेके जाते हैं, और वहां पे रंगनाथ जी जो है सोए हुए हैं, और रामानुजाचार्य बोलते हैं देखो इनकी आंखें। और जब दासरथी रंगनाथ जी की आंखें देखता है तो देखता ही रह जाता है कि इतना सुंदर भी क्या कोई हो सकता है, और वो जो है रामानुजाचार्य का शिष्य बन जाता है, और आगे चल के वो उनका वन ऑफ द फेवरेट शिष्य बन जाता है। मैं बहुत बार ये कथा बताती हूँ कि मैं भी जब श्रीरंगम गई थी और ये कहानी मैंने याद की थी मेरे मन में, और मैं अंदर में गई थी रंगनाथ जी को देखने के लिए कि उनकी आंखें इतनी सुंदर है, मुझे देखना है, देख रहा मैं देखूंगी उनकी आंखें कितनी सुंदर है। और जब मैंने देखा मुझे अच्छी लगी, इतनी तो सुंदर नहीं लगी, तो मुझे लगा ऐसा क्यों, इतनी सुंदर क्यों नहीं लग रही। और तब तक मेरे दर्शन करने का भी टाइम हो गया, और वहां पे लोग बोले कि बाहर निकलिए बाहर निकलिए, मुझे लगा अरे रे मैंने पूरा दर्शन भी नहीं किया, मैं सिर्फ आंखें देखती हुई रह गई। संभव वो गार्ड की कृपा या शायद रंगनाथ जी की कृपा, उसने मुझे फिर से भेजा कि आप और एक बार दर्शन कर लीजिए। और इस बार मैंने ठीक से सब दर्शन करके आ गई, जो भगवान के जो श्री चरण है। और मैं रास्ते भर सोचती रही कि मुझे क्यों नहीं लगी उनकी आंखें इतनी सुंदर, क्योंकि जब हम स्टोरी में सुनते हैं तो हमारी कितनी एक्सपेक्टेशन होती है जाने के बाद कि पता नहीं कितनी सुंदर लगती होगी उनकी आंखें। भगवान की आंखें तो सुंदर ही है, मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू से द लिटरल सेंस ऑफ इट। और तब मुझे लगा कि अरे ऐसे थोड़ी लगती है आंखें सुंदर, वो तो कोई गुरु का हाथ पकड़ा हो तभी लगती है आंखें सुंदर, ऐसे नहीं लगती सुंदर। किसी गुरु की कृपा की जरूरत है, कोई हमारा हाथ पकड़े और दिखाए, तब जब हम देखे तब लगता है कि हाँ सुंदर है। तो गुरु कृपा की तो बहुत जरूरत है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि निजे नाम करी दान, जब चैतन्य महाप्रभु अपना नाम दान करते हैं तो उसमें अपना शक्ति भी वो देते हैं। तारी लो जगत तुम ही उप जाइया लोहो निज परित्रण, ये भी बहुत सुंदर बात। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे पूरी दुनिया में सबको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम क्यों बैठे हो, जाओ तुम भी ले लो जल्दी जल्दी। ये जियो के सिम कार्ड फ्री में दिए थे, तब इतना हॉट टॉपिक हुआ करता था, जिसको देखो पूछते थे तुम्हारे पास जियो सिम नहीं है फ्री में दे रहे हैं, तुम्हारे पास जियो सिम नहीं है फ्री में दे रहे हैं। अब मुझे भी बहुत लोग पूछ रहे थे, तब मुझे लगा था कि रियली सच में फ्री में दे रहे, सो सरप्राइजिंग। तो उसी तरह से यहाँ पे बोल रहे कि फ्री में दे रहे हैं, तुम भी ले लो, क्यों खड़े हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, सबको दे रहे हैं, पूरी दुनिया में सबको तार रहे अपना नाम देके, तो तुम क्यों खड़े हो। लेकिन हम बोलते वेल एक्चुअली मैं दीक्षा नहीं ले सकते, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। अरे फ्री में दे रहे जाओ, भगवान का नाम दे रहे, भगवान तुमको ले जाने के लिए तैयार है और तुम्हारे पास में हजारों बहाने हैं। अब जब यमराज आएगा तब तो क्या तुम्हारी बहाने यमराज मानेगा? जब यमराज तुमको लेने के लिए आएंगे तब यमराज क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं मैडम, आई गिव यू अ सेकंड चांस, बिकॉज आपके हस्बैंड माने नहीं थे ना तब, सो नो प्रॉब्लम, आई गिव यू अ सेकंड अपॉर्चुनिटी। यमराज ऐसा कुछ नहीं बोले गए, अरे आपकी मदर ने नहीं माना था ना, तो आई गिव यू सेकंड अपॉर्चुनिटी, नो प्रॉब्लम, जस्ट हैव टू गो। ऐसे कोई ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए चिल्ला के बोल रहे भक्ति विनोद ठाकुर, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, दे रहे हैं ले लो, इट्स फ्री, इसलिए कुछ आपको पे नहीं करना है। बट वी हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजंस क्यों नहीं लेना चाहते हम, ये हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है। पर जब यमराज आएगा तो वो हमारी कोई प्रॉब्लम सुनने वाला नहीं है। नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं, से कथा सुनिया आसियाची नाथा, से कथा सुनिया, से कथा सुनिया आसियाची नाथा, तुमार चरण ताले, भक्ति विनोद कलिया कंदिया, भक्ति विनोद कलिया कंदिया, अपना कहानी बोले, हे मोन दुर्माति संसार भीतरे पुड़िया चीनु पे बहुत सुंदर बात बोल रही कि से को था सुनिया आसिया चीना था, माने यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वो महाजन ने मुझे बोला ना, तो मैं इसलिए आपके पास में आया हूँ, ठाकुर जी बोल रहे हैं। इट्स लाइक अगर आप किसी बड़े आदमी के पास जाओ, अगर आपके पास में कोई रेफरेंस हो, सॉरी, अगर आप किसी बड़े आदमी के पास जाओ, अगर आपके पास में रेफरेंस हो तो बड़ा आदमी आपको भाव देता है ना। सपोज आप किसी आदमी के पास जाओ, आप बोलो कि वो जो गुंटूर में जिनका गोल्ड ज्वेलरी का शॉप है ना, उन्होंने मुझे भेजा है, वो अच्छा उन्होंने भेजा, अच्छा अच्छा फिर तो आइए, यू नीड अ रिकमेंडेशन, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो उनकी बात सुन के, जो महाजन है ना, उनकी बात सुन के मैं आपके पास में आया हूँ। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का बोलने का मतलब ये है कि शायद हम डायरेक्टली अगर भगवान के सामने आ जाए तो हमें पता देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं है, लेकिन अगर किसी भक्त का रिकमेंडेशन हो तो भगवान बोलेंगे अच्छा अच्छा यू आर कनेक्टेड टू प्रभुपाद, ओके ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बात है ना, एक्चुअली द वे हमारा जिस तरह से काम क्रोध मोह मद मत्सरी हमारे में जितने भाव है, पता नहीं हम शायद कितना भी चैंटिंग कर ले, जिस दिन हम गोलोक वृंदावन के गेट के पास में खड़े रहेंगे शायद वो सैनिक बोलेंगे तुमसे तो बदबू आ रही है, तुम नहीं आ सकते अंदर में, हमको तो सिर्फ प्रभुपाद जी अंदर ले जा सकते हैं, वो भी मेन डोर से नहीं, शायद गोलोक वृंदावन में कहीं पीछे कोई शॉर्टकट कोई कुछ दीवार में होल है तो वहां से प्रभुपाद जी हमें स्मगल कर देंगे कि आ जाओ अंदर में, क्योंकि हमने वो गुण है ही नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे कि रिकमेंडेशन, मैं वो महाजन की बात सुन के आया हूँ ठाकुर जी आपके पास में, मुझे काइंडली एक्सेप्ट करो। मैंने बहुत सालों पहले एक बहुत सुंदर कथा सुनी थी, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, एक विदेशी डिवोटी मायापुर में ये अपना स्व अनुभव सबसे शेयर कर रही थी। वो बता रही थी कि कैसे वो तो भक्ति जीवन में आ गई थी लेकिन उनके पति भक्ति जीवन में नहीं आए थे, तो वो कितना भी रिक्वेस्ट करती अपनी अपने पति को, वो नहीं आ रहे थे, भक्ति से नहीं जुड़ रहे थे। आफ्टर सम टाइम कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और उनके पति गुजर गए। अब जब उनके पति गुजर गए तो उनको दुखी थी, शी बिकेम अ विडो, तो रात को भी सपने में उनको पति आते थे, अरे मेरे पति चले गए। मैं उनको भक्ति से कनेक्ट नहीं कर पाई, बस उनको यही दुख था। एक दिन उसको अजीब सा सपना आया और वो सबसे शेयर कर रही थी। वो तो उस सपने में मेरे पति आए और उस सपने में मेरे पति ने बोला मुझे कि देखो मैं यहाँ पे एक ऐसी जगह में आ गया हूँ, ये बहुत ही अलग सी जगह है, जैसे धरती में होती है वैसा नहीं है। यहाँ पे दो गेट है, एक गेट के अंदर से सबकी रोने की और ये आवाज आ रही है और वहां पे सबको धकेला जा रहा है, खींचा जा रहा है अंदर की ओर, और एक साइड में एक और अच्छा गेट है, वहां से अच्छी सुगंध आ रही है, सब वहां पे अंदर में बहुत खुश है, हमें लाइन में ले जाया जा रहा है, मुझे इस गेट की ओर ले जा रहे हैं जहां पे सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहां मुझे खींचा जा रहा है, और इस साइड में ये जो गेट है जहां पे सब खुश है और सब आनंद से अंदर जा रहे हैं, वहां पे एक आदमी खड़ा है जो सबको अंदर भेज रहा है। एंड ही लुक्स लाइक दैट ओल्ड मैन यू हैव बीन वर्शिपिंग, श्रीला प्रभुपाद। शेयरिंग दैट कि मुझे ऐसे सपने में माय हस्बैंड वाज टेलिंग मी दैट दैट ओल्ड मैन जिसको तुम करती थी ना पूजा, वो वहां खड़े हैं और वो सबको अंदर भेज रहे हैं, अंदर में जाने के लिए, सेंडिंग एवरीबॉडी इनसाइड। तो मैंने भी बोला कि जरा मुझे भी अंदर में इस साइड में ले लो। तो उन्होंने बोला कि ये एक्सचेंज यहाँ नहीं हो सकता, ये तुम नीचे से करके आना पड़ेगा, टिकट तुम नीचे से लेके आना पड़ेगा। तो मुझे ये सुन के इतना अच्छा लगा कि प्रभुपाद इज ओनली, क्या बोलते, होप हमारे लिए, ओनली ही कैन। एंड सुन के अच्छा लगा कि ही स्टैंडिंग देयर राइट ऑन द गेट एंड मे बी मेकिंग श्योर कि हाँ हाँ ओके, इसका डिवोटीज चलो 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 अंदर जाओ, आप सबका एंट्रेंस, आपका टिकट मैंने पहले से ही काट लिया है। सो ऐसी बात है। तो यहां बोल रहे हैं कि से को था सुनिया आसिया ची अमी, मैं उस महाजन के रिकमेंडेशन से आपके पास में आया हूँ ठाकुर जी, मुझे काइंडली आप एक्सेप्ट करिए। उसके बाद बोल रहे तुम्हारा चरण तले, आपके श्री चरण के किन्नों के पास में। हाँ, उसके बाद बोल रहे भक्ति विनोदा कांदिया कांदिया। अब भगवान के श्री चरण के पास आ गए, भगवान को बता दिया कि मैं किसका रिकमेंडेशन लेके आया हूं। अब जो है भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कांदिया कांदिया, रोते रोते बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब कोई चीज मांगते हैं तो मांगने का भी कोई तरीका होता है। अब आप इमेजिन करिए, रास्ते में अगर कोई आरटीसी कॉम्प्लेक्स के पास में बेगर है, भीख मांग रहे हैं, अच्छा सा लिपस्टिक लगाया हुआ है, महंगी साड़ी है, पर्स है, परफ्यूम छाटा हुआ है, और हमारे गाड़ी के पास में एक्सक्यूज मी कि आप 10 रुपए भीख दे सकते हैं, आखिर आप 10 रुपए भीख दे सकते हैं एक्सक्यूज मी, तो आप क्या बोलोगे? मैडम आपको भीख की क्या जरूरत है, यू लुकिंग गुड, राइट? अब भीख तो हम किसको देते हैं? थोड़े से फटे फटे कपड़े है, हाथ में बच्चा है, रो रहे हैं, 2 दिन से खाया नहीं, इमीडिएटली हमारे हार्ट में कुछ होता है, नो आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। मतलब मांगने का भी एक तरीका है। तो उसका मतलब जब हम भगवान से भी मांगते हैं कि आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू, तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए। हम तो हमेशा हंसते हंसते ही है, अब ले गए इस बार तो भी ठीक है, नहीं ले गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आई एम कंफर्टेबल, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आई एम एवरीथिंग इज ऑल राइट, वेल प्लान मेरे लाइफ में, और मेरी प्रॉपर्टीज, एफडी, एवरीथिंग परफेक्ट, हेल्थ भी परफेक्ट है। हमारे एटीट्यूड यही है ना, हमें व्याकुलता नहीं है, हमारी लाइफ की फिलोसफी वो जो है ना कि भाई आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। भगवान का धाम शाश्वत है, मैं शाश्वत हूँ, भगवत गीता के 2nd चैप्टर में बोल दिया है कि भाई सोल की कोई मरण नहीं होता है, सोल परमानेंट है, फिर जल्दी क्या है, जाएंगे कभी ना कभी तो हम जाएंगे। अब कभी ना कभी जाएंगे वाले एटीट्यूड वाले हमेशा यही रह जाएंगे। जिसको जाने की जल्दी है, जो रोता है ठाकुर जी के सामने, मुझे जाना है, मैं आपके पास आना चाहता हूं, तो इसीलिए यहां पर भक्ति विनोदा कांदिया कांदिया, टू क्राई फॉर कृष्णा, आई वॉन्ट यू। हम जब सीरियस है उसके बारे में, देन इज गोइंग टू इमीडिएटली होल्ड अवर मदर। भी नॉर्मल इस भौतिक जगत में एक माँ भी क्या करते हैं जब बच्चा रोता है, माँ को पार्टी में जाना है, क्या करेंगे? नहीं लगी वो टॉय हाथ में दे देंगे, बच्चा भूल जाएगा, टॉय खेलता रहेगा, माँ चली जाएगी। लेकिन जो कुछ बच्चे शार्प होते हैं, बोलते मुझे नहीं चाहिए कोई भी टॉय, मुझे सिर्फ आप चाहिए, फिर क्या होता है कि मम्मी रुक जाती है, फिर बोल देती है फादर को, नहीं मैं नहीं आ सकता, ये बहुत नहीं आ सकती हूँ मैं, ये बहुत रो रहा है, मैं रह जाऊंगी आज घर। होता है ना सबके घर में ये, बस भगवान भी हमारे साथ यही करते हैं, हमें छोटी छोटी टॉयज दे देते हैं खेलने के लिए, नई नई गाड़ियाँ। कुछ लोगों को गाड़ियों की बहुत शौक होती है, तो उनको जिनको गाड़ियों की शौक होती है, तुम गाड़ी से खेलो, तुम ये गाड़ी से खेलो, तुम प्रॉपर्टी से खेलो, तुम बिजनेस के साथ खेलो, तुम इसके साथ खेलो, अलग अलग चीजें हमें दे देते हैं खेलने के लिए, और हम बिजी हो जाते हैं खेलने में, और फिर वो एस्केप हो जाता है। लेकिन जो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, उसको भी भगवान इमीडिएटली ले लेता है। तो यहाँ पे बोल रहे भक्ति विनोदा कांदिया कांदिया, रोते हुए भक्ति विनोद ठाकुर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको ना कहानी बोले, बोल रहे कि वो मेरा मेरे लाइफ की कहानी। एक बार हमने एक भजन पे मैंने प्रवचन दिया था ना, भूलिया तुम्हारे संसारे आसे, अगर आप लोग को याद हो कैसे एक पर्सन का लाइफ होता है, पहले माता के गर्भ में कष्ट ले कष्ट पाता है, उसके बाद बाहर निकलने के बाद में भूल जाता है रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को देख के, उसके बाद में पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, बस ऐसा ही लाइफ हो जाता है, और बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद भगवान की याद आती है। अब बहुत देर हो जाती है, जब शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है तब भगवान का नाम लेना कितना मुश्किल है। मैं तो देखती हूँ बहुत सारे लोग जो भक्ति से बुढ़ापे में जुड़ते हैं, वो चाहते हैं भक्ति करना लेकिन नहीं कर पाते, वो चाहते हैं प्रवचन में आना सुनना लेकिन बोलते माता जी कमर में दर्द है, माता जी इधर दर्द है, कैसे आए। आना चाहते यात्रा में पैरों में दर्द है, नहीं आ पाएंगे, कितना सारे प्रॉब्लम, जब करना है नहीं कर पा रहे हैं, नींद आ जाती है, आदत नहीं है, अपने माइंड को इतने सालों से कंडीशन कर दिया है अलग रास्ते में, अब कितना मुश्किल है। बहुत सारे लोग मुझसे शेयर करते हैं कि माता जी ऐसे आदत हो गई इतने सालों से न्यूज देखने की, टीवी देखने की, अब बंद करके जब करना कितना मुश्किल हो जा रहा है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, ऐसी कितनी सारी आदतें हम बना लेते हैं जो बाद में ओल्ड एज में चेंज करना बहुत मुश्किल है। जब हमारा शरीर यंग है तभी हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के साथ हमें जुड़ना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यंग एज में भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। अगर आज हम किसी बड़े आदमी को अगर कोई फूलों का गुच्छा दे तो हम सड़े हुए फूल नहीं देते हैं, हम खराब मुरझाए हुए फूल नहीं देते हैं ना, हम फ्रेश बुके देते हैं। हम किसी को फ्रूट्स भी दे तो सड़े हुए फ्रूट्स नहीं देंगे, हम फ्रेश एप्पल देंगे। लेकिन भगवान को हमारा शरीर हम सड़ा हुआ देना चाहते हैं। जब मेरा शरीर अच्छा है, मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, तब भगवान को नहीं देना चाहती हूँ। जब मेरे पैर और काम नहीं करेंगे, हाथ काम नहीं करेंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा, पैरों से मैं चल नहीं पाऊंगी, घर में सारे बोल देंगे यू आर नॉट वॉन्टेड एनी मोर, थोड़ा साल तो घर में भी आपको काम में लगा ही देते हैं क्योंकि पोता पोती को देखने का काम कर लेते हैं, तब तक आप यूजफुल है, उसके बाद वो लोग भी बोल देंगे कि वी डोंट नीड यू, तब एकदम भक्ति जाग जाती है, अब मैं भक्ति करूंगी, अब क्या करेंगे, अब हो गया शरीर में और कुछ नहीं बचा है, अब मन को भगवान में लगाना कितना मुश्किल है। तो भगवान तो इतने बड़े लोग हैं, साधारण इस दुनिया के जो सो कॉल्ड वीवीआईपी भी सड़ा हुआ फ्रूट नहीं लेते हैं, मुरझाए हुए फ्लावर नहीं लेते हैं, तो ठाकुर जी तो कितने बड़े हैं। ऑफकोर्स ठाकुर जी तो दयालु है, वो तो हम उनको किसी भी रूप में उनके पास जाए तो वो हमें पकड़ लेते हैं, लेकिन उतनी सेंस हमें भी होनी चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं उनको। तो अगर हम हमारी यूथ उनको दे सके, भगवान की सेवा में हम लगा सके, भौतिक जगत में सबकी ये माइंडसेट है कि यंगस्टर्स भक्ति में उन्हें बहुत अजीब लगता है। मुझे याद है कुछ सालों पहले मैं इनकम टैक्स ऑफिस में गई थी, मेरा प्रवचन था, तो वो मुझे, अब उन दिनों में तो इतना ज़्यादा मैं यूट्यूब वगैरह में थी नहीं तो मुझे जानते नहीं थे, तो सिर्फ इस्कॉन की माताजी है तो मुझे प्रवचन के लिए बुलाया, तो मैं गई और इनकम टैक्स ऑफिसर कोई यूपी वाले थे तो उनके कैबिन में मुझे बिठाया गया, सेमिनार हॉल रेडी हो रहा था, सारे ऑफिसर्स को वहाँ बिठा रहे थे, तो जैसे ही मैं अंदर आई तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे तरफ नहीं देख रहे, मेरे पीछे देख रहे कि, तो मैं समझी नहीं क्या हुआ, फिर मैं बैठ गई, फिर वो और भी दरवाजे के पास देख रहे हैं कि माताजी आएगी शायद माताजी, और फिर ऑफिसर ने बोला कि सर यही है माताजी, तो बोला व्हाट, और उन्होंने मुझे फ्रेंकली बोला, सॉरी मैडम, लेकिन माता जी मतलब मैंने सोचा कि व्हाइट कलर की साड़ी में शायद सारे व्हाइट बालों के साथ में कोई बूढ़ी सी लेडी आएगी, इसलिए मैं देख रहा था कि शायद आपके पीछे कोई आएगी। आई सेड वेल अनफॉर्चुनेटली मैं ही हूँ माता जी इस्कॉन की। तो बोला ओके मैडम। तब तक सेमिनार हॉल रेडी हो गया था, तो बोला कि सर मैडम का क्लास शुरू करते हैं, सारे ऑफिस आ गए। फिर सेमिनार हॉल में मैं गई और उसके बाद में मैंने प्रवचन वगैरह दिया। प्रवचन होने के बाद में मुझे बोल रहे थे कि मैडम आई वॉज अमेज्ड, मेरी एक अलग ही दृष्टिकोण थी भक्ति या स्पिरिचुअल लाइफ को देखने की, काफी कुछ मुझे समझ में आया। मैं हमेशा सोचता था कि यंग एज में क्यों, मैं काफी सरप्राइज था, लेकिन आपके प्रवचन में बहुत सारे क्वेश्चंस का आपने मुझे आंसर दे दिया। तो एट द आउटसेट आपको देखने से मुझे लगा कि इतनी यंग एज में भक्ति करनी जरूरी है क्या, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। और देन आफ्टर दैट ही वॉज क्वाइट हैप्पी एंड ही टुक प्रभुपाद ऑल बुक सेट लिया, उन्होंने पूरा भगवद गीता और सारी किताबें उन्होंने ली। तो ये लोगों का एक जनरल माइंड सेट है कि भक्ति माने बूढ़े लोगों के लिए, भक्ति माने रिटायर्ड लोगों के लिए। लेकिन भगवान ने जो भगवद गीता बोली थी वो तो घर के अंदर नहीं बोली थी, युद्ध भवन युद्ध के क्षेत्र में बोला गया था। उसका मतलब वो रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है, वो जो कर्म करते उनके लिए है, राइट। नहीं तो युद्ध क्षेत्र में क्यों बोला, अर्जुन को ये क्यों नहीं बोला कि भाई कॉजीली रूम में बैठ के आराम से बात करते, वाई इन द युद्ध क्षेत्र। सो भक्ति इज फॉर एवरीबडी एंड द बेस्ट वे टू डू इज दैट टू स्टार्ट फ्रॉम यंग एज, क्योंकि तब हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम जल्दी से उस आदतों को अपना सकते हैं। जैसे जैसे हमारी एज हो जाती है आदतों को बदलना भी कितना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद में भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ति विनोद कांदीय कांदीय, भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मेरा मन जो मुझे इस सिचुएशन में लेके आ गया है। चैतन्य महाप्रभु बड़े दया से नादिया में अवतार लिए हैं हमें सब तारने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर हमें मैसेज दे रहे हैं इस सॉन्ग के द्वारा कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए, इस मैसेज को हमें जल्दी से अपनाना चाहिए और भक्ति में लग जाना चाहिए। आज यहीं खत्म करेंगे, आने वाले रविवार को कोई नया टॉपिक फिर से लेंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की
सब। कृष्णा 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 लगे सब कृष्णा।